لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک چیز کا اعلان کرنا مجلس کے یا تقریر کے شروع میں ضروری ہے، ورنہ بعض مومنین کے لیے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تقریر آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں الاثر اسلامک سینٹر میں ہو رہی ہے، اور میلبرن اور اس کے قریب کے شہروں میں اسلامی مہینے کی جو ڈیٹس چل رہی ہیں وہ باقی دنیا سے مختلف ہیں، یعنی ہم ایک دن پیچھے ہیں باقی دنیا سے. یہاں پہ آج 24 جولائی انگریزی تاریخ ہے، اور کل 25 ہے، کل سے مطلب ٹمارو والی کل، یسٹرڈے والی نہیں. تو آج یہاں کے کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامک ڈیٹ 23 ذیلحج ختم ہوئی ہے، اور اب جو رات شروع ہوئی ہے یہ 24 ذیلحج کی رات ہے، یعنی مباہلہ عید، شب مباہلہ. اور آنے والا دن، میں مختلف طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں، آنے والا دن یعنی 25 جولائی یعنی منڈے، میلبرن کے مون سائٹنگ کے اعتبار سے جو آیت اللہ سیسانی کی تقلید میں ہے وہ مباہلے کا دن ہے. یہ اتنی وضاحت اس لیے کرنا پڑی مختلف انداز سے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں سنڈے کا دن مباہلہ تھا، تو اب جو میری تقریر ہو رہی ہے تو مباہلے کا دن تو ان کے اعتبار سے ختم ہو گئے، تو کچھ چیزیں ان کو ایرریلیونٹ لگیں گی، خاص طور پر شروع میں. آج مجلس میں مجمع ایسا ہے کہ میں ذرا کمفرٹیبل ہو کے بات کر سکتا ہوں. پچھلی دو تقاریر میں ہمارے کچھ ٹاپک اناؤنس ہوئے تھے جو کمپلیٹ اس لیے نہیں ہو سکے تھے کہ اس وقت جو مجمع تھا اور وہ جس جوش کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے اندر میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ان ٹاپکس پہ بات کرنا جو پوسٹر میں اناؤنس ہو گئے تھے. تو آج ذرا آرام سے بات ہوگی، لیکن ارادہ کر کے یہ بیٹھا ہوں کہ 50 منٹ میں مجھے اپنی اسپیچ مکمل کرنا ہے. اب باقی عرف تو ربی بے فسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے یا بدلنے سے. اچھا، اب یہ بتا دیا جائے کہ آج کی تقریر کے آغاز میں، اسٹارٹنگ میں، میں نے قرآن کی 4 آیتوں کی تلاوت کی. یہ 4 آیتیں وہ ہیں کہ جن ان 4 آیتوں کی بھی آج سالگرہ، آج یا کل، یہ جو 2 دن ہیں اس کے اندر ان 4 آیتوں کی بھی سالگرہ، اور 4 امپورٹنٹ اوکیشن ہیں. یہ اسلامی کیلنڈر کے غالباً پورے اسلامی کیلنڈر میں اور کوئی ڈیٹس ایسی نہیں ہے کہ جہاں اتنا بیک ٹو بیک اتنے سارے اوکیشن جمع ہو جائیں. میں بہت ہی شارٹ میں خالی ایک لسٹ بتاتا ہوں، قرآن کی آیتوں کا ریفرنس دیتا ہوں، پھر جو میرا اپنا سبجیکٹ ہے اس پہ بات کروں گا. اب बहुत ज्यादा ये बात कही जाने लगी है, इसलिए इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आज से मतलब है 24th ऑफ ज़िलहिज। इसमें सबसे पहला जो हमारे सामने अहम ओकेजन आता है वो है आयए विलायत का नुज़ूल। वो आयए विलायत जो कंप्लीट हुई थी गदीर खुम के मैदान में, गदीर खुम पे हमारी लास्ट स्पीच थी एक वीक पहले। गदीर का जो ऐलान था, ये तो खुद इमाम के अल्फाज हैं कि असल में तो वो स्टार्ट हुआ था आयए विलायत से, लेकिन आयए विलायत में अल्लाह ने इतना ओपनली गदीर का वाला ऐलान नहीं किया था, इशारे दिए थे, उन इशारों को समझना पड़ता था, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। पर्पजली इंटेंशनली जो भी कहिए, तो फिर गदीर का वो ऐलान उस तरह किया गया। आये विलायत वो है जो मैंने सबसे पहले तिलावत की, इन नमा वलियुकुम। कुरान ने कहा कि याद रखो कि तुम्हारे मौला कौन है, वली मौला। और आये शुरू हुई है इन्नमा से, इन्नमा जिसको अंग्रेजी में आप कहेंगे ओनली, तो याद रखो कि तुम्हारे मौला ओनली ये अल्लाह। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलहू, और दूसरा वली तुम्हारा रसूल है, और वल्लज़ीन आमनू, तुम्हारा तीसरा वली वो है जो ईमान लाया, व यकीमून सलाता, और वो नमाजों को कायम करता है, व युक्तून ज़कता, और इस हालत में ज़कात देता है कि वह हम राकेऊन, जब वो रुकू की कैफियत में हो। ओनली दोस थ्री, ये सिर्फ ये तीन तुम्हारे वली है, अल्लाह, रसूल और हालत रुकू में ज़कात देने वाला। ये सिर्फ आयत का तर्जमा कर रहा हूं, ये आयत नाजिल हुई थी 24th ऑफ ज़िलहिज को, और इसमें जो कुरान के आयत के अल्फाज हैं, यही अल्फाज पैगंबर ने अपने अंदाज से गदीर खुम में बयान की। فَإِنَّ اللَّهَ هِيَ مَوْلَايَ وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ। अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम्हारा मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसके मौला अली। तो यही आया विलायत, अल्लाह की मौला होने का ऐलान, अनाउंसमेंट, रसूल के मौला होने का अनाउंसमेंट, और फिर हालत रुकू में ज़कात देने वाला, और फिर वही गदीर खुम का मैदान। तो गदीर का स्टार्ट हो गया था आया विलायत के नाजिल होने से, और हर एक को वाकया मालूम है, लेकिन इस वाकये की मुख्तसर रिवायत दोबारा सुन लीजिए। अर्चे हर एक को मालूम है, और मेरे पास आज कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्तसर रिवायत। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौला कायनात के फर्स्ट कजिन भी हैं, और मौला के सहाबी भी हैं, कंपेनियन, और मौला के शागिर्द भी हैं, स्टूडेंट, और मौला के समझी भी हैं। समझी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यहाँ गालिबन अंग्रेजी में, अंग्रेजी कल्चर में समझी होते ही नहीं है शायद, समझी भी है, यानी इनकी बेटी लुबाबा मौला के बेटे अब्बास अलमदार की बीवी थी। और इनकी पहली तीन खसूसियतें रसूलुल्लाह के साथ भी हैं कि रसूलुल्लाह के फर्स्ट कजिन हैं, रसूलुल्लाह के सहाबी कंपेनियन हैं, रसूलुल्लाह के स्टूडेंट। और सही बुखारी में जो पांच जगह पे रिवायत आई है वो इन्हीं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की है कि पैगंबर ने आखिर में कागज और कलम मांगा और लोगों ने देने से इनकार कर दिया। और ये भी सही बुखारी में है ना कि जब ये रिवायत कोट करते थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो रोते थे। जुमेरात का दिन था, चुनाचे थर्सडे ट्रेजेडी के नाम से वो तारीख में आज भी मौजूद है। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, पैगंबर की बहुत सारी हदीसें इनको याद थी, और जब पब्लिक इनको देखती थी, अब ये बात हो रही है रसूलुल्लाह के बहुत बाद की, एक नई जनरेशन पैदा हो गई, वो जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखते हैं घेर के बैठ जाते हैं कि हमें पैगंबर की कोई हदीस सुनाइए। और यह जमाने के उन मुसलमानों का जज्बा था जो या तो पैगंबर के बाद इस्लाम लाए या पैगंबर के बाद पैदा हुए, जिसकी वजह से फिर बहुत से लोगों ने झूठी हदीसें बनाई पब्लिक में पॉपुलर होने के लिए। जैसे आज भी हमारे मेंबर से भी बहुत सी झूठी सी बातें बयान की जाती है ताकि पब्लिक में लोग पॉपुलर हो, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो बहरहाल, जमजम का कुआं है, हज का मौका है, मक्के का माहौल है, वहां अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जमजम के कुएं पे बैठे हुए अब हाजियों का मजमा उनको हदीसें सुना रहे कि इतने में एक ऐसा आदमी वहीं पे आया जमजम के कुएं के पास जिसके सर पे अमामा है, अरब का ड्रेस, चेहरे पे एक नकाब पड़ी है। वो भी अरबों का ड्रेस, क्योंकि डेजर्ट में जब ट्रेवलिंग की जाती है तो अपने फेस को बचाने के लिए नकाब मर्द भी पहनते हैं, जिसकी बिना पे आजकल ये बहुत ज्यादा मसाला फैला दिया है कुछ मुसलमानों ने भी कि इस्लाम में ये नकाब तो है ही नहीं, ये तो डेजर्ट की वजह से ये नकाब का कंसेप्ट आया है। खैर वो छोड़िए, तरफ चेहरे पे नकाब है, ये आम सा ड्रेस था उन अरबों का जो उसी वक्त मक्के में एंटर हुए होते हैं डेजर्ट से। वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के सामने बैठ गए। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कंटिन्यू किया, अब जैसे मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, अगर कुछ लोग आएंगे तो मेरी मजलिस तो कंटिन्यू होगी। लेकिन अब ये हुआ कि इधर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पैगंबर की कोई हदीस सुनाते, इधर वो आने वाला कहता है कि आए इब्ने अब्बास, अब एक हदीस मैं भी सुनाऊं, तो सुनाइए। उन्होंने भी एक मुकाबले में एक हदीस सुनाई, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने दूसरी हदीस सुनाई, उसने फिर एक हदीस सुनाई, हदीसों का एक तरह का मुकाबला हो गया कि अब लोग भी हैरान हो गए कि अब तक तो हम ये समझते थे कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से ज्यादा हदीसें किसी को नहीं मालूम, ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की हर हदीस के मुकाबले में, यानी कोई झूठी वूठी हदीस नहीं या एक दूसरे से कंट्राडिक्ट हदीस नहीं, हदीसों की तिलावत हो रही, इधर से एक हदीस, उधर से एक हदीस, इधर से फिर हदीस, उधर से फिर हदीस, यहां तक कि आखिर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास खामोश हो गए कि अब हमें यह सेशन खत्म करना है। लेकिन इस तरह खामोश नहीं, खुद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैरान हो गए कि तू है कौन जिसे इतनी ही हदीसें याद है जितनी मुझे याद है, बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा। अब आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया और कहा कि अय इब्ने अब्बास, आप तो मुझे पहचानते हैं, अना जुंदुब इब्ने जुनादा ए गफारी, मैं अबू ज़र गफारी। अबू ज़र गफारी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से तो एज में बहुत बड़े और उनकी अजमत को सब जानते हैं, कहा मैं अबू ज़र गफारी हूं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा समझ में आया, अगर तुम्हें इतनी हदीसें याद हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आखिर में भी एक हदीस और सुना के ये सेशन खत्म करो। लेकिन अब जो हदीस उसने सुनाई, अब अबू ज़र गफारी इतने इंटरेस्टिंग इनके हालात हैं कि एक दो घंटे की तो अलग से आप स्पीच कभी मुझसे सुन लीजिए मुख्तसरी, कि अबू ज़र गफारी ने कहा इतनी देर में मजमा बहुत बढ़ गया था, वो सारे हाजी जो थे दौड़ दौड़ के यहां आने लगे, एक नहीं पैगंबर के दो सहाबियों से हदीसें सुनने को मिल रही और दोनों बहुत ही अथेंटिक सहाबी। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को मुखातब करके कहा, लेकिन मजमे को सुनाते हुए, कि मैंने अपने कानों से सुना है और अगर नहीं सुना हो तो मैं बहरा हो जाऊं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है और अगर नहीं देखा है तो मैं अंधा हो जाऊं। अब ये इस हदीस से पहले उनका स्टाइल ही ऐसा बन गया कि मजमा और ज्यादा अटेंटिव हो गया कि ये कौन सी हदीस, इतने यकीन के साथ कह रहा है कि अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुना तो बहरा हो जाऊं, आंखों से नहीं देखा तो अंधा हो जाऊं, कोई ऐसी हदीस है जिसका ताल्लुक देखने से भी। कहा कि सुनो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जब पैगंबर की वफात हुई तो 13 साल के थे, और शिबली नुमानी ने यही एतराज किया है कि इनकी ये कागज कलम वाली कलम दबात वाली हदीस हम क्यों ले, ये तो 13 साल के बच्चे थे, बच्चों की हदीस का क्या भरोसा। तो फिर हमारे उलमा का जवाब भी है, ये तो बिल्कुल आखिरी पैगंबर की जिंदगी की हदीस है, अगर इसलिए नहीं ली जाएगी कि बच्चे थे तो इनकी सारी हदीसों को कैंसिल करो, इसलिए कि वो हदीसें तो इससे भी पहले की होंगी, जब ये 9 साल के थे, जब ये 8 साल के थे। खैर मैं किसी और तरफ चला गया, बात ये थी कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास शायद उस वक्त 4 या 5 साल के थे जबकि हदीस अबू ज़र सुना रहे। कहा कि हम पैगंबर के पीछे नमाज जोहर पढ़ रहे थे और अभी हम नमाज जोहर में नमाज जोहर खत्म करके बैठे थे कि मस्जिद में एक सवाल करने वाला आया। अब इसके बाद मशहूर वाकया, और आने के बाद उसने एक एक से कहा कि मैं फकीर हूं, मेरी मदद करो, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। आखिर में उसने आसमान की जानिब देखा, घर के मस्जिद की छत थी, लेकिन वो वाली छत खजूर के पत्तों वाली जिसके अंदर से आसमान भी नजर आता था, तो आसमान की जानिब देखा और कहा खुदा बंदा मैं तेरे घर में आया, तेरे नाम पे लोगों से मांगा और यहां से खाली हाथ वापस जा रहा हूं। इतनी देर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अबू जर गफारी सुना रहे कि इतनी देर में मेरा मौला नमाज में मशगूल हो गया था, जोहर की नमाज के बाद, फिर कुछ सुन्नत तो नाफिला भी है, कुछ असर की है, कुछ और भी। जिस वक्त ये जुमला कहा तो उस वक्त मेरे मौला ने अपने हाथ से इशारा किया, अपने दाएं हाथ से जिसमें एक अंगूठी थी, और वो साहिल को इशारा किया कि अंगूठी ले जाओ। वो ये अंगूठी लेके चला। जैसे ही वो अंगूठी लेके निकला, कहा कि मैंने अपने कानों से सुना, सुनने वाला इसके बाद आएगा वरना बहरा हो जाओ, आंखों से देखा ये देखने वाला मंजर। जैसे ही वो बाहर निकला, वैसे ही अल्लाह के रसूल अली की नमाज खत्म होने का इंतजार किया। अली की नमाज खत्म हुई, पैगंबर ने एक मर्तबा कहा कि हाजा अली कायदुल बरारा व कातिलुल कफरा मंसूरुन मन नसरा मखजूलुन मन खजला। ये अली नेक लोगों का कायद। यहां फिर एक मर्तबा तवज्जो है कि कुरान ने भी विलायत के हवाले से अली का तारुफ जो कराया तो नमाज के हवाले से कराया, और अली वाले तो नमाज छोड़ देना, हक विलायत समझते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ के जन्नत में गए तो फायदा क्या हुआ अली की विलायत का, फायदा तो उसी को कहते हैं ना। क्योंकि मैं ये तकरीरें सुनता रहता हूं, इसलिए एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो सिर्फ पंजाब के लोग समझेंगे। कहते जी मैं जा रहा था सड़क के ऊपर, वहां पे पुलिस वाले ने रोका, मेरे पास सारे पेपर थे गाड़ी के, उसने कहा चले जाओ। तो मेरे दोस्त ने पुलिस वाले से कहा थैंक यू। मैंने कहा इसका थैंक यू क्यों अदा कर रहे हो, इसने कौन सा हमारे साथ फेवर किया, हमारे पेपर सारे थे, इसको तो हमें छोड़ना ही छोड़ना। कहा कि थैंक यू उसका अदा करो जिसके अंदर चुस आए, मजा आए कि कागज कोई ना हो और कैसे चले जाओ, उससे तो कहो कि थैंक यू। अब इसके बाद वो कहते हैं चुनाचे अगर सारी नेकियां करके फिर अली हमारी मदद करके जन्नत में ले जाएंगे तो हमें जरूरत क्या है। अब पता नहीं उनको जन्नत क्या है, हमारी नेकियों का स्टेटस क्या है, लेकिन मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं क्योंकि वक्त कम है और मैं तो जो इरादा करके बैठा चार चीजों का भी पहली चीज भी मुकम्मल नहीं हुई है। कहा चुस तो इसमें है, मजा तो इसमें है कि कुछ ना हो फिर अली लेके जाए तब पता चले कि हाँ अली अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। खैर तो ऐसी फजूल बातों को छोड़े, पैगंबर फरमा रहे कायदुल बरारा अली नेक लोगों का कायद है, कातिलुल कफरा काफिरों का कातिल है, मंसूरुन मन नसरा जो अली की मदद करेगा खुद अल्लाह उसकी मदद करेगा, मखजूलुन मन खजला और जो अली की तौहीन करेगा अल्लाह उसको जलील और रुस्वा करेगा। अब उधर कह रहे ये मैं सुन रहा था, इसके बाद पैगंबर ने एक जुमला और कहा और पैगंबर ने आसमान की जानिब देख के कहा खुदावंद मेरे भाई मूसा ने एक मरतबा तुझसे ये दुआ की थी ना رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اور واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري। اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر کے ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ کہا پیغمبر کا جملہ کہ یہ دعا کی تھی نا تو میں بھی تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں۔ انا محمد النبیوکا وصفیوکا मैं मोहम्मद हूं तेरा नबी भी हूं और बरगजीदा चुना हुआ चूजन वन हूं सफीयों का। अल्लाहुम्म शरह ली सदरी तू मेरे सीने को कुशादा कर दे, व यस्सिर ली अमरी मेरे काम को आसान कर दे, वजअल अलीयन वजीरन मिन अहली अली को मेरा वजीर बना, और वश्दुद बेही जहरी इसके जरिए मेरी कमर को मजबूत कर दे। और जिब्राइल की आयत लेके नाजिल हुए इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमुना सला व युतूना ज़का व हुम राकिऊन हालत रुकू में ज़कात देने वाले। आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अगर मेरे कानों ने यह ना सुना और मैं झूठ कह रहा हूं तो बहरा हो जाऊं, मेरी आंखों ने यह ना देखा हो कि अली ने इस तरह अंगूठी दी तो मैं अंधा हो जाऊं। ये वाकया 24th ऑफ ज़िलहिज को पेश आया और इसके बाद इससे रिलेटेड दो तीन बातें और हैं लेकिन अब मैं छोड़ रहा हूं सिर्फ याद दहानी के लिए। और ये रिवायत अबू ज़र की चूंकि कम पढ़ी जाती है मैंने पढ़ दी। ये आज की पहली मुनासिबत है 24th ऑफ ज़िलहिज को। चुनांचे 24th ऑफ ज़िलहिज बाकायदा ग़दीर के बाद हमारी सबसे बड़ी ईद ईमानी ईद। तो दो तो वह ईदें जिसका ताल्लुक इस्लाम से है और दो ये ईद है जिसका ताल्लुक ईमान से। अब एक जुमला कह दूं, मुझे डर लग रहा था कि जब तक कि मैं वहां तक पहुंचूंगा शायद मजलिस का वक्त या तकरीर का वक्त खत्म हो जाए। मुबाहिले के दिन आमाल कम है, ग़दीर के दिन आमाल बहुत ज्यादा थे, वह आपने आमाल कर लिए पाक और पाकीजा हो गए, गुनाह माफ हो गए, अल्लाह ने खताएं माफ कर दी, अली के रास्ते में लगाए। अब अमाल कम है, जो अमाल है उनमें नंबर एक तो उसूल है। अलबत्ता वही उसूल कि आयतुल्लाह सिस्तानी और उससे पहले मरहूम आयतुल्लाह खोई और आज भी शेख फैयाज और बड़े बड़े महाराजे मुबाहले के उसूल की रिवायत को वीक समझते हैं। अलबत्ता जुमला लिखते हैं, ये मुबाहला जो था वो मेरी तकरीर में चौथे मकाम पे था, लेकिन चूंकि ईद का तस्करा आ गया अंगूठी के हवाले से तो आमाल बहुत मुख्तसर। एक जुमला लिखते हैं, ईद मुबाहले का गुसल ऑथेंटिक हदीस में नहीं है, मुबाहले का गुसल ऑथेंटिक हदीस में। ये जुमला लिखते हैं, इसको समझ लीजिए। ईद मुबाहला इन 24 ज़िलहिज्जा का जो वाकया, उसकी हदीस गुसल की हदीस, वाकये की नहीं, गुसल की हदीस इतनी ऑथेंटिक नहीं। लेकिन अगर कभी आपको अपने दुश्मन से मुबाहला करना पड़े, उसके बाद इस्लाम में मुबाहला बाकायदा एक इबादत बन के शामिल हो गया। अहले बैत ने तो मुबाहला किया, लेकिन जिस तरह अहले बैत ने नमाजें पढ़ी, पहली नमाज अली ने पढ़ी, तो अब कयामत तक के लिए नमाज हमको पढ़ना है ना। इस्लाम में मुबाहला भी आ गए कि अगर कभी हक और बातिल के मसले पे, बाकी नहीं अपने जमीन के झगड़े और जायदाद के झगड़े इसमें नहीं, हक और बातिल के झगड़े में वक्त पड़े तो मुबाहला करो अपने दुश्मन से, लेकिन गुसल उसका गुसल जो है बहुत ही ऑथेंटिक। खैर, ये तो एक जुमला आ गया फिकी, तो मैंने वजाहत कर दी मुबाहले का गुसल और ईद मुबाहले का गुसल। अब आइए दूसरी मुनासिबत बहुत जल्दी से बयान करूं। दूसरा यह है कि आज तो नहीं, लेकिन दुनिया के कुछ मुल्कों में आज हमारे एक कैलेंडर से आने वाला कल, कल की रात सूरह दहर के नाजिल होने की रात, चुनाच इसीलिए वो मैंने एक आयत की तिलावत की, वो युतिमून अत्ताम अला हुब्बिहि मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये अहले बैत वो है जो यतीम को खाना देते हैं, मिस्कीन को खाना देते हैं, असीर को, और इसके बाद इनका कसीदा पढ़ता हुआ कुरान नाजिल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 23rd ज़िलहिज्ज को पहला रोजा रखा गया, मिस्कीन आया इफ्तार के वक्त, 24th ज़िलहिज्ज को दूसरा रोजा रखा गया, यतीम आया, 25th ज़िलहिज्ज को तीसरा रोजा रखा गया, असीर आया। और जैसे ही वो असीर रोटियां लेके गया, सूरह दहर नाजिल हुआ, जो नाचे इस आयत की तिलावत, अब इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं। यह सूरह दहर, अलबत्ता इसके अंदर दो बहुत अहम पैगाम है, एक बता रहा हूं, एक पैगाम तो नहीं बता रहा, एक तारीखी चीज। इससे पहले वाली आयत वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिहि मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कुरान कसीदा पढ़ रहा अहले बैत का। अब अंगूठी वाले वाकये में सिर्फ अली, इसमें पूरे पंजीकरण, मगर बिल्कुल इससे पहले वाली आयत क्या, वह यूफून बिन नजरे व या खाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। ये अहले बैत वो हैं जो अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं और कयामत के दिन से डरते हैं। अली कयामत के दिन से डर रहे हैं, कुरान गवाही दे रहा। शहजादी कौनैन कयामत के दिन से डर रही है, कुरान, ये कुरान की आयत है और हरेक को पता है सूरह दहर अहले बैत के लिए नाजिल हुआ। हसनैन जवानान जन्नत के सरदार और कयामत से डर रहे हैं, और हर साहिबान ईमान की तो ये हालत है कि समझते हैं कयामत कोई चीज ही नहीं, एक हंसी मजाक खेल और ठट्टा। खास तौर पर इन तारीखों में तो और ज्यादा बेखौफ हो जाते हैं, क्योंकि ये वो तारीखें हैं कि जहां शायरों और मनकबत कहने वालों की बादशाही होती है, और शायरी और मनकबत में जो कभी फरिश्तों को डांटा जाता है, कभी मुनकिर नकीर को लात मार के भगाया जाता है, कभी जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्तों की गर्दन मरोड़ी जाती है। अब ये आयत आपके सामने, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिहि मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन व ला शुकूरा नखाफु मिन यौमिन अबूसन क़म्तरीरा। आखिरी आयत भी यही कि हम तो उस दिन से डरते हैं जिस दिन बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी सिट्टी गुम हो गई। मैंने बहुत ही स्लैंग से तर्जुमा कर दी। अहले बैत के अमल को जो कुरान ने बताया, उससे पहले वाली आयत भी है कि वो कयामत से डरते हैं, उसके बाद वाली आयत भी है कि कयामत से डरते हैं। अहले बैत के लिए कयामत मसला नहीं है, लेकिन अजमत परवरदिगार का खौफ उनके दिलों में और हमारे दिल में इतनी बेखौफी है। ये सूरह दहर का पहला पैगाम है। दूसरी बात का भी गौर कीजिएगा, कुरान ने कहा कि यतीमों मिस्कीनों असीर आए। असीर क्या? कैदी ना, कैदी तो जेल में होता है, वो कैसे आ गए? किसने उसको रिहाई दिलवाई। ये बहुत अहम एक मसला है, इसमें इस्लाम का पूरा निजाम है, जिहाद और गुलामी का निजाम शामिल है, कभी और आज मौका नहीं। हाँ, अब आइए जो बहुत अहम बात है, तीसरी बात। आज की रात हदीसे किसा की सालगिरह। अच्छा, ये सूरह दहर भी नाजिल हुआ 25 को, तो ये उसका सूरह दहर की सालगिरह, पूरा सूरह दहर, एक आयत नहीं पूरा सूरह दहर। उसके बाद आज की तीसरी मुनासिबत, ये भी आजकल बहुत पढ़ी जा रही है, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं उन लोगों से जो हज और उमरा करके आ चुके हैं, और वो लोग भी याद रख लें जो कभी हज और उमरा करने जाए, खुदा हर मोमिन और मोमिना को हज और उमरे की सआदत बख्शे, वो परवरदिगार आलम की रहमतें भी देखे, अहले बैत के आसार भी देखे, जुमला काम आएगा, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। और वो ये है कि आज की रात हदीसे किसा की रात, इन मानों में कि 23rd ऑफ ज़िलहिज को पैगंबर और ईसाइयों में ये बात हुई कि कल, टुमारो, अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर फजर प्रेयर हम मुबाहिला करेंगे। तो पैगंबर ईशा की नमाज के बाद फिर शहजादी के हुजरे में आए, चादर मंगवाई, वो पूरा वाकया जो आप सुनते रहते हैं, वो पूरा वाकया आप सुनते रहते हैं, इस तरह से चादर तथीर के नीचे सब जमा हुए और आयत तथीर नाजिल हुई आज की रात। अब ये एक बहस कि आज की रात आयत तथीर पहली बार नाजिल हुई या पहले नाजिल हो चुकी थी, अल्लाह ने आज इसको रिपीट किया, लेकिन महाराज आयत तथीर भी आज की रात नाजिल हुई और हदीसे किसा भी, तो आयत तथीर की भी सालगिरह हुई और हदीसे किसा की भी सालगिरह हुई, वाकई आपका आपका सुना हुआ। ये तीसरी मुनासिबत थी, बहुत कुछ कहना था हदीसे किसा पे, वक्त नहीं, अलबत्ता हदीसे किसा का एक जुमला जहन में रखिएगा, हम फातिमा तो वाबूहा व बालूहा व बनुआ, इसे चौथी और आखिरी मुनासिबत बनेगी। और सबसे बड़ी मुनासिबत जिसकी वजह से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, वो है मुबाहिले का दिन। आज की रात मुबाहिले की रात, पैगंबर चादर तथीर में सबको लेके अल्लाह से दुआ करते हैं, और फिर उसके बाद ईसाइयों से तो इस्लाम को फतह कल मिली, आपके लिए 6 पैगाम आज मिल गए। मा ज़ुकिरा खबरुन हाज़ा फी महफ़िलि मिन महाफ़िलि अहले अर्ज़ व फीहि जम्मुन मिन शियतिना, पता नहीं हम शिया हैं कि नहीं है, जैसा अहले बैत चाहते, लेकिन वह मुहिब्बीन मोहब्बत जरूर करते हैं। 6 बशारतें आपको मिल गई आज की रात कि रहमत नाजिल होगी, मलाइका आपको घेरे में लेके आपके लिए इस्तिग़फ़ार करें, हफ़त बेहिमिल मलाइका, आपके चारों तरफ मलाइका, जहां जिसे किसा पड़ी जाए बस तख़फ़रत, और इस्तिग़फ़ार करेंगे जब तक कि आप लोग बिखर ना जाए। बिखरने के बाद मलाइका का इस्तिग़फ़ार खत्म हो गया, क्योंकि फिर आप अहले बैत के फ़ज़ाइल नहीं सुन रहे होंगे, आप जाके कोई गाने का कैसेट ना सुन रहे हो नऊज़ु बिल्ला, कोई फिल्म ना देख रहे हो नऊज़ु बिल्ला, किसी डिस्को डांस की जाने में ना जा रहे हो। खैर, तीन ये और तीन वफ़ीहि महमूमन इल्ला वफ़रज अल्लाह हम्माम, परेशान हाल मुसीबत ज़्यादा था, ये 6 बशारतें आज की रात आपको मिल रही अगर अहले बैत के फजाइल बयान किए जाए ये हदीस की साखी शक्ल में। इसके बाद सुबह को पैगंबर फिर मस्जिद में गए, नमाज फजर पढ़ाई, नमाज फजर पढ़ा के पैगंबर मस्जिद से बाहर आए और उस चबूतरे पर बैठ गए, जो लोग हज और उमरा कर चुके हैं वो अपने दिमाग में तस्वीर लेकर आए, वीडियो चलाए, शहजादी के हुजरे के बिल्कुल सामने एक चबूतरा, यानी एक डेक, अमेरिका में उसको डेक कहते हैं, शायद कहीं प्लेटफॉर्म कहते हो, चाहे कहीं बाहर अलग अलग लफ्ज होंगे, ऐसा इतनी ऊंचाई का, इससे थोड़ी ज्यादा ऊंचाई का, वहां जाके बैठ गए, और फिर चारों अहले बैत की शख्सियतें पैगंबर के पास जमा हूं, तीन तो मस्जिद से पैगंबर के साथ आए थे, शहजादी अपने हुजरे से निकले। ये चबूतरा जो है, सारा आलम इस्लाम इस पे नमाज पढ़ने के लिए इस तरह से जंगो जिदाल में मसरूफ रहता कि रश के जमाने में आजकल इसको बंद कर देते, किसी को नहीं जाने देते, और बहुत से लोग इसको पैगंबर का चबूतरा समझते हैं, नहीं, इसका असली नाम है सुफ़ाए मुबाहिला, वो जगह जहां मुबाहिले पर जाने से पहले रसूलुल्लाह ने पंजतन को जमा किया और फिर वहां से वो चले मुबाहिले के लिए, जो चौथा वाकया पेश आया। अब इससे पहले कि मैं मुबाहिले पे आके अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लाऊं, यहां रोककर एक बात, पहली मुनासिबत मैंने अर्ज की, मुबाहिले में दो मुनासिबतें थी, अली की विलायत का ऐलान और मुबाहिला। विलायती अली जो गदीर में भी आपने सुना मेरा आखिरी जुमला, और आज शुरू में आपने कुरान की आयत सुनी, अब जरा सा गदीर के जुमले को मुकम्मल करें। विलायत का मतलब मोहब्बत नहीं, यह गलत फहमी है। मैंने अर्ज किया था ना कि अली से मोहब्बत तो हिंदू भी करते हैं, अली से मोहब्बत तो सिख भी करते हैं, अली से मोहब्बत तो एथेस्ट भी करते हैं, विलायत का मतलब मोहब्बत नहीं, विरायत का मतलब है इताअत, मास्टर अली इज योर मास्टर, अली तुम्हारा आका है, जो अली कहेगा तुम्हें करना। ये आखिरी जुमले थे मेरी लास्ट स्पीच की। चुनाचे मासूम ने भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी मर्तबा का ला तनालो विलायतुना इल्ला बिताअते वल वरा, हमारी विलायत मिल ही नहीं सकती जब तक कि इताअत ना करो। इताअत का मतलब यह कि जो इमाम कहे तुम्हें मानना। और उस जमाने में जो मुखलिस लोग थे वो वाकान इस तरह से अली की इताअत करते थे, और औलाद अली की कि जो मासूम कर रहे हैं वही अमल वो भी करते। हत्ता ये के बाद औकात लोगों को रोकना पड़ता था। ये जुमला सुनिए, मैंने मुहर्रम में कई बार इसकी तशरीह की है, मेलबर्न में तो नहीं, रोकना पड़ता था कि भाई इताअत करो। इताअत का मतलब जो हम हुक्म दें वो तुम्हें करना। इताअत का ये मतलब न लो कि जो हम कर रहे हैं वो तुम्हें करना है। फर्क देखिए, एक्शन में हमको फॉलो नहीं करोगे, जो हमारे ऑर्डर्स हैं इसमें हमको फॉलो करोगे। जैसे गुलाम है, गुलाम किसी के घर में हो तो उसे अपने आका का हुक्म मानना है। ये नहीं देखना है कि मेरा आका जो कर रहा है वो भी वही मैं भी करूं। आका ने अपने लिए बिरयानी पकाई है तो मालूम हुआ कि आका बिरयानी खा रहा है, मैं भी बिरयानी खाऊं, दो जूते पड़ेंगे। तो मैं बहुत ही स्लैंग किस्म के एग्जाम्पल देके आगे बढ़ रहा हूं। आका का ऑर्डर अगर है तो ठीक, जो ऑर्डर है। बहुत अहम यह चीज है, एक्शन को फॉलो करना है या ऑर्डर्स को फॉलो करना। चुनाचे आपको नहजुल बलागा में मौला का वो मशहूर खुतबा मिलेगा कि किसी ने आके कंप्लेन किया, आला इब्ने हारिस का खुतबा, कि मौला मेरा भाई तो आपको इस तरह को फॉलो कर रहा है कि आपने फटे हुए कपड़े पहने, उसने भी फटे हुए कपड़े पहन ली, आप सूखी रोटी खाते हैं, उसने भी सूखी रोटी खाना शुरू कर दी। मौला ने जाके इस तरह डांटा कि नहजुल बलागा में एक छोटा सा खुतबा बन गए, और कहा ऐ दुश्मन खुदा, शैतान ने तेरी अकल पे गलबा पा लिया। मौला वो आपको फॉलो कर रहा है मौला, और आप कह रहे हैं तू शैतान के रास्ते पे चल रहा। तो कई जगह ये आई है ये हदीस कि ये मत देखो हम क्या कर रहे हैं, ये देखो हम कह क्या रहे हैं। हमारा ऑर्डर फॉलो करो, नॉट अवर एक्शन। हाँ, उसमें जो एक्शन के लिए हम कहें कि इसको फॉलो करो, फॉलो करना। पैगंबर ने जब पहली नमाज पढ़ी तो पीछे मजमे को देखा, सल्लू कमा रहा ऐ तुमूनी उसल, वैसी नमाज पढ़ो जैसी मैं पढ़ रहा हूं। हाँ, यहां फॉलो करना है, क्योंकि असल में ये एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, ऑर्डर को। चुनाचे एक बहुत बड़ा उस जमाने में ये खतरा था कि साहिबान ईमान में जो मुखलिस लोग थे, जिनको इससे गरज नहीं थी, याद रखिए ये जुमला, इनको गरज नहीं थी कि अली हमको जन्नत में ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। हम मौलाई हैं, अली वाले हैं, यानी नऊज़ु बिल्ला अगर अली हमें जहन्नम में भी धकेलेंगे तो हम उसमें भी खुशी से चले जाएंगे। हम अली के गुलाम, जो वो कहेंगे हम उसे मानेंगे। वो लोग इस तरह फॉलो करते थे कि इमाम मासूम बाज़ औकात कुछ अच्छे काम छोड़ देते हैं कि ये इन लोगों की ताकत से बाहर, ये मुझे फॉलो करने जाएंगे निभा नहीं पाएंगे। चुनाचे वह हदीस मुकम्मल करूं जो मैंने मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत में शुरू की थी। इमाम हसन हुसैन दोनों हर साल एक साथ हज पे जाते हैं, लेकिन जब तक के हसन जिंदा हैं इमामत हसन की है, हुसैन की इमामत नहीं। हर एक को पता है कि हसन के बाद हुसैन इमाम बनने वाले, लेकिन बहरहाल लॉजिकल और कॉमन सेंस की बात है कि अभी तो हसन इमाम है ना, तो ज्यादा लोगों के सवाल भी हसन से होंगे, ज्यादा फॉलो भी हसन को करेंगे। वहां हज पे जाते हैं अरफात में, इमाम हसन रोजा नहीं रखते, दस्तरखान बिछा के खाना खा रहे हुसैन रोजे से, दोनों भाइयों के खेमे बैक टू बैक एक जगह पर, एक में दस्तरखान बिछा है लजीज खाने और एक के अंदर रोजा, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के जो मुखलिस, हर इमाम के जमाने में खाली मुनाफिकीन नहीं थे, वहां ऐसे चाहने वाले भी थे कि अगर हसन मुस्तफा रोजा रखते ये सब भी रोजा रखते, चाहे इनकी जान खतरे में पड़ जाती है अरफात की गर्मी और हज का माहौल, लेकिन ये कहते ना इमाम ने रोजा रखा हमको भी रोजा रखना, ज्यादा से ज्यादा क्या मर जाएंगे ना इमाम के नाम पर जान भी कुर्बान। वो जो परिंदे ने कहा था, लेकिन परिंदे ने क्या कहा था कि यूं जान नहीं दे रहा हूं, बुलाया जा रहा है तो जान दे रहा हूं, यानी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं। तो अब हसन मुश्तबा ने रोजा छोड़ ही दिया। एक हदीस बरादराने अहले सुन्नत के पास भी है, मतलब वो चो बात तो सही कि रमजान में रसूलुल्लाह ने आके मस्जिद में पहली रमजान नमाजें पढ़ी, जिसको वो आजकल तरावी कहने लगे, तरावी नहीं, उस वक्त लोग मस्जिद में कम थे, रमजान की रात है, रोजा खोल के अपने घरों में गए, लेकिन अगली सुबह कोई खबर फैली कि अरे तुम्हें नहीं पता कल रसूलुल्लाह मस्जिद के अंदर नमाजें पढ़ के गए, बड़ा मजा आया रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ने में। अगले दिन मजमा डबल हो गए। अब ये खबर फैली, तीसरी रात को मजमा और डबल हो गए, चौथी रात को मजमा और बढ़ गया, पैगंबर ही नहीं आए, निकले ही नहीं हुजरे से। सुबह को लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, पूरी रात इंतजार करते रहे, आप नहीं आए। कहा, इसलिए नहीं आया कि अभी तुम में इतना जोश है, जज्बा है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, लेकिन बाद के जो मुसलमान आ रहे हैं वो हर रात पूरी रात नमाजें नहीं पढ़ सकते। ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से नमाज इस्लाम में वाजिब हो जाए और बाद वालों के लिए इस नमाज का पढ़ना मुश्किल हो जाए, तो मैं आया ही नहीं। ये बरादरान अहले सुन्नत की एक मशहूर हदीस है, जिसकी वजह से फिर हमारे उलमा कहते हैं कि तरावी रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ाई, जिसे आप तरावी की शक्ल कह रहे हैं वो भी तीन रातों के बाद छोड़ दी। तो खैर, असल अपनी जगह, हसन मुश्तबा को ये डर है, अगर ये लफ्ज तौहीन इमाम ना हो, कि मैं रोजा रखूंगा तो चाहे जिन लोगों में ताकत ना हो कहेंगे नहीं, इमाम ने हज में जाके रोजा रखा, हम भी रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या मर जाएंगे ना, मौत भी कबूल। आज भी हमारे ऐसे मोमिन है जो कहते हैं इमाम के नाम पे मौत भी कबूल। हसन ने रोजा नहीं रखा, फिर इसके बाद हुसैन रोजा रखते रहे, हसन शहीद हो गए, हुसैन इमाम बन गए। अब हुसैन पब्लिक के फोकस में आ गए, चुनाचे वो जो सारी जिंदगी हज में रोजा रखता रहा, इमाम हुसैन ने रोजा छोड़ दिया। अब इमाम हुसैन इफ्तार दिन के वक्त अराफात में दस्तरखान बिछा के खाना खाते हैं, चौथे इमाम बाप के साथ आए अली इब्न हुसैन, लेकिन लोगों की तवज्जो, पता है कि बाप के इमाम है लेकिन इतनी नहीं, वो रोजा रखे हुए, तो पता है कि अभी लोग मेरे बाप को देखेंगे। इमाम हुसैन ने रोजे छोड़ दिए, अराफात में खाना पीना शुरू कर दिया, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, सज्जाद इमाम बन गए, और साथ में इमाम बाकिर भी आ रहे। अब इमाम बाकिर रोजा रखते हैं और इमाम सज्जाद जो सारा साल तकरीबन फाके से रहते हैं, रोजा रखते रहते हैं, वो रोजा नहीं रख रहे। ये क्यों था? ये इसलिए था कि उस जमाने के शियों ने विलायत का सही मतलब समझा, लेकिन थोड़ा सा धोखा खा गए। विलायत का मतलब ये समझा कि खाली जबानी मोहब्बत के दावे काफी नहीं है, फॉलो करना होता, लेकिन वो इस तरह से फॉलो कर रहे थे कि जो ऑर्डर नहीं है इमाम का उसको भी फॉलो कर रहे। तो मौला अली का नहजुल बलागा का खुतबा देखिएगा कि मेरे जैसे कपड़े, मेरा जैसा खाना, मेरा जैसा मकान तुम्हें फॉलो नहीं करना, मैं इमाम हूं, मुझे अपनी उम्मत के गरीब तरीन आदमी के लेवल से भी एक डिग्री नीचे जाके जिंदगी गुजारना, ताकि वो गरीब तरीन आदमी कभी कहे या अल्लाह जैसा वक्त मेरे ऊपर आया ऐसा भी किसी के ऊपर है, और पलट के देखे तो मुझसे ज्यादा सादा खिजा, मुझसे ज्यादा फटे हुए कपड़े, मुझसे ज्यादा टूटा हुआ मकान इमाम मासूम का। तो कह रहे कि नहीं, हमें फॉलो ना करो। इसी तरह हसन ने रोजा नहीं रखा, हुसैन ने रखा, क्योंकि अभी हुसैन इमाम नहीं है, हरेक को पता है कि है लेकिन अभी नहीं। हुसैन ने रोजा छोड़ दिया, सज्जाद ने रोजा रखा, क्योंकि अभी सज्जाद इमाम नहीं। तो ये था विलायत का वो तसव्वुर जो अहले बैत और खुदा दे रहा, फॉलो करो, ऑर्डर्स को मानो। और इसमें खास तौर पर एक बात याद रखिएगा, इताअत के लिए, इसका मतलब शॉर्ट समरी क्या है इस पूरी गुफ्तगू की, कि विलायत का मतलब है इमाम की इताअत, उनके ऑर्डर्स को मानो। और ऑर्डर्स को मानने के लिए जरूरी है नॉलेज, पता तो चले उनका ऑर्डर है क्या, इमाम का ऑर्डर क्या है कहां से पता चलेगा। भाई हुकूमतें होती हैं, उनके बारे में भी मुख्तलिफ अफवाहें फैल जाती, कोई कहता है गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया, कोई कहता है वो कानून बनाया, कोई कहता है ये इंसेंटिव दिया, कुछ लोग सेंट्रल लीग की वेबसाइट पर पहुंच जाते भाई क्या मिलने वाला है हमको, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो वही तो माना जाएगा ना। कॉमन सेंस की बात लोग भूल जाते हैं कि विलायत का मतलब इताअत तक तो समझ में आ गया, इताअत का मतलब है नॉलेज। ये देखो कि इमाम ने हमें क्या ऑर्डर्स दिए। अच्छा, इमाम की नॉलेज तो इतनी कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं, उनसे आप कायनात का हर मसला पूछेंगे जवाब हाजिर है, लेकिन इताअत में वो मसलों पर तवज्जो देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। भाई हजरत मूसा की मां का नाम क्या था, क्या इमाम को नहीं मालूम, लेकिन उसका इताअत से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो पूछे तब भी ना पूछे तब भी। हजरत खिजर नबी थे या खैर नबी थे, और खैर नबी थे तो इंसान थे कि फरिश्ता थे, कुरान ने सिर्फ इतना कहा मैं निबाद देना साले ही एक नेक बंदा, तो क्या थे, इसका इताअत से ताल्लुक नहीं। आपको पता चल जाए कि खिजर नबी है तब भी, और पता चले कि खिजर नबी नहीं है तब भी, और कुछ पता ना चले तब भी, इताअत से इसका ताल्लुक नहीं। इमाम के पास जवाब है, लेकिन ये सारी चीज आदम से पहले भी कोई आदम इस दुनिया में गुजरा है, अगर यही आदम पहले आदम है तो साइंस कहती है कि इंसान तो पता नहीं कितने मिलियन साल से इस दुनिया में, ये आदम की हिस्ट्री तो 10,000 है खाली, 10,000। अब इसका इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं। तो यकीनन ये नॉलेज अहले बैत ने हमको दी, हमको लेना, लेकिन असल नॉलेज जो विलायत के से रिलेटेड है उसको कहते हैं इल्मे फिका। इल्मे फिका के अंदर ये बताया जाता है कि इमाम के ऑर्डर्स क्या है। इल्मे हिस्ट्री में इमाम के ऑर्डर्स नहीं बताए जाते, अंबिया के वाकयात में इमाम के ऑर्डर्स नहीं बताए जाते, या सूरज चांद के हालात में इमाम के ऑर्डर्स नहीं है। वो भी अच्छी चीज है, इमाम की नॉलेज आपको लेने, लेकिन असल जो नॉलेज है वो है इल्मे फिक। इल्मे फिक का मतलब क्या है, जिसको मुख्तसर करके आप कहिए इस्लामिक लॉ, आगा सिस्तानी की किताब, या उर्दू में तौज़ीहुल मसाइल, जिसमें इमाम के ऑर्डर्स हमको दिए गए। यह है विलायत, असली विलायत यह है। विलायत यानी इताअत, इताअत का मतलब है तुम्हें पता चले। और इसीलिए इमाम मासूम, अच्छा इस कायनात में विलायत का सबसे बड़ा ओपनली दुश्मन कौन है? आपके जहन में शहजादी के दुश्मन आएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा जो ओपनली दुश्मन है वो लश्कर यजीद है। लश्कर यजीद पूरा का पूरा खुल्लम खुल्ला मैदान में तलवार लेके उतरा हुआ, ये विलायत के सबसे बड़े दुश्मन है। यानी आज जो बरादरान अहले सुन्नत गदीर के को नहीं मानते या नहीं जानते, या शहजादी के ऊपर होने वाले मजालिम को नहीं जानते, यजीद को सब जानते। यजीद इतना खुला खुला दुश्मन, यजीदियों की सबसे बड़ी खराबी यानी दुश्मनान विलायत की सबसे बड़ी खराबी आका ने मैदान आशूर में क्या बताई, लकद मुलियत बुतूनकुम मिनल हराम, तुम्हारे पेट हराम गिजा से भर गए। जहां हराम गिजा आती है वहां पे आदमी दुश्मन विलायत बनता है, एक स्टेज। दूसरा स्टेज, ये हराम गिजा पेट में आती कहां से, मौला की हदीस जो छठे इमाम ने रिपीट की, इल्मे हलाल और हराम हासिल करो वरना तुम्हारे माल में हराम माल आ जाएगा। एक तो है कि आदमी को चाहिए हराम, बच्चे बच्चे होंगे, यहां के बच्चे तो नहीं लेकिन बच्चे होंगे, जिन्हें चाहिए हराम, फुला बर्गर चाहिए, फुला पिज्जा चाहिए, एक है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर हलाल और हराम का इल्म नहीं है तो इमाम फरमाते हैं ये मौला की हदीस है और बहुत ही मुस्तनद हदीस, और छठे इमाम की हदीस है कि हलाल और हराम हासिल करो वरना तुम्हारे माल में हराम आ जाएगा और वो तुम्हारे पेट में चला जाएगा। तो दुश्मनान विलायत की सबसे बड़ी जो खराबी थी वो हराम खाते थे, और ये हराम की खराबी आती है जो हलाल और हराम का इल्म ना, ये हराम माल हराम गिजाएं हराम पेट में हराम लुकमा कहां जाता है जहां हलाल और हराम की नॉलेज ना हो। ये वही विलायत यानी इताअत, इताअत के हमारे पता तो चले कि इस मुल्क का कानून क्या। आप में से अक्सर ने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लेते वक्त कोई ओथ उठाया होगा तो कहा होगा कि हम यहाँ के कानून की पाबंदी करेंगे, मालूम होना चाहिए। अच्छा ये भी याद रखिए कि दुनिया भर में जितने भी कानून है सब में यह है कि अगर आपको कानून नहीं पता तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर के इस्लाम ने कई जगह एक्सक्यूज दिया लेकिन कई जगह नहीं दिया, कहा अगर तो मालूम कर सकते और नहीं मालूम करे तो नो एक्सक्यूज, हाँ मालूम ही नहीं कर सकते तो मैं भी एक्सक्यूज। खैर ये बहुत लंबी बात छेड़ रहा हूं, ये मुहर्रम के अशरे की कुछ मजलिस में जो मुझे कहना है वो मैं यहां कह गया। तो अब कहा कि हलाल और हराम का इल्म नहीं लोगे तुम्हारा माल हराम बन जाएगा, और हराम का मतलब है कि तुम दुश्मन विलायत बन जाओगे। अब मैं एक इसकी मोटी सी मिसाल दे दूं फिर मुबाहले पर आता हूं। ये मेरी आखिरी तकरीर है, खासे तवील अरसे तक फिर मेरी गैर हाजिरी रहेगी, और अगर इस दौरान अल असर के नए रेसिडेंस आलिम का वीजा लग गया, आजकल वीजों में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो शायद ये मेरी आखिरी ही तकरीर हो। लेकिन एक छोटी सी मिसाल, हमारी फिका में दो मसले बहुत मुश्किल माने जाते हैं इश्तिहाद के लेवल पे, पब्लिक के लेवल पे नहीं, इश्तिहाद के लेवल पे। पब्लिक के लेवल पे मुश्किल मसला क्या है जिस पर अमल करना मुश्किल हो जाए। मसलन ऑस्ट्रेलिया में मॉर्गेज लिए बगैर जिंदगी गुजारना, वो मॉर्गेज में इंटरेस्ट आ जाएगा और इंटरेस्ट तो इस्लाम में हराम है, वो सारी डिटेल है ना। लेकिन अगर स्टार्ट हम यहां से करें कि जरूरत है नहीं हम इस प्रॉब्लम में जाने के, बगैर मॉर्गेज की जिंदगी गुजारेंगे। भाई पाकिस्तान में लोग गुजारते ही थे, एक जमाने मकान लोग बनाते थे, अपने जिंदगी भर जमा जत्था करके गाड़ी खरीदते ही थे कैश के ऊपर। अब तो वहां भी जरा मुश्किल है लेकिन यहां तो तकरीबन लोग कहते हैं नामुमकिन। ये पब्लिक के लेवल की मुश्किलात, वो नहीं। बात हो रही है इश्तेहाद की। इश्तेहाद का मतलब है मुख्तलिफ हदीसें ऐसी हमारे पास आ गई कि उससे एक नतीजा और फतवा निकालना मुश्किल हो रहा हो। तो दो मसले हमारे यहां बहुत मुश्किल है, यानी इतने मुश्किल है जिसमें बच्चा बच्चा हमारे यहां आजकल बोल रहा है एक मसले में। तो ये दो मसले इतने मुश्किल है कि जब कभी कोई मुश्तहिद मर्जी है ना मर्जी वो क्लास लेता है, यानी उसका दर्स होता है, जब उसके स्टूडेंट्स में से कोई बहुत ही ज्यादा जहीन पहुंच जाता है एक बड़े लेवल पर, और ये देखना होता है ये मुश्तहिद बना के नहीं बना। ये स्टेज हर एक पे गुजरा। आगा खुई जब आगा नाइनी के दर्स में थे तो आगा खुई को भी ये स्टेज था। इमाम खुमैनी जब आगा अब्दुल करीम हायरी के दर्स में थे उनका भी ये स्टेज था। आगा सिस्तानी जब आगा खुई के पास पढ़ते थे उनका भी ये स्टेज था। आगा खामेनेई जब आगा खुमैनी के पास पढ़ते, कि जब स्टेज पे पहुंचे, एग्जाम होता है ना, आप पीएचडी करेंगे तो आखिर में आपको एक थीसिस पेश करना और उसके ऊपर बहस होगी। तो अब ये जो इश्तेहाद का समझ लीजिए कि इश्तेहाद तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो यही दो में से कोई एक टॉपिक दिया जाता कि इस पर तुम रिसर्च करके लाओ और एक फतवा दो, तो अंदाजा हो जाएगा कि तुम इश्तेहाद की क्वालिटीज रखते हो, इतनी नॉलेज है कि नहीं। ये दो बहुत अहम मसले, यानी अहम इन मानों में बन गए हैं कि इसमें हदीसें इतनी मुख्तलिफ हैं। एक मसले के जाने में हल्का सा इशारा इसलिए कर रहा हूं कि इसमें गलतफहमी पैदा हो रही है, ये मेरे टॉपिक से जरा हटकर है, जरा है भी। बज़ाहिर तो यहां मुझे आज इंडिया के मोमिनीन इतने नजर नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान के मोमिनीन ज्यादा हैं। एक केस कराची में है बल्कि पाकिस्तान में चल रहा है, दुआ ज़हरा का। मैं इस केस के अंदर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं कि जरा सा इनकम्प्लीट बात कह दी गई तो गलतफहमी होगी, लेकिन इस केस के हवाले से एक मसला इतना ज्यादा रिपीट हुआ कि वो बाद में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इस वक्त केस ऐसा था, एक सैदानी बच्ची किस तरह से फंस गई तो कुछ बोलना मुनासिब नहीं था। अब बहरहाल मसला हल हो रहा है, वो बच्ची भी उनके हाथ से निकल आई है, अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन इसमें बार बार एक मसला आया, वो एक तरह सही भी है, वो सही है, लेकिन जिस तरह रिपीट हुआ उसके नुकसान, वो क्या है, वो ये है कि हर जगह, अब ये अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पता नहीं ये सही है कि नहीं, ये प्ली ली गई या ये स्टैंड इख्तियार किया गया कि फिक्र जाफरी में वली की इजाजत के बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये वो पहला मसला है जो मुश्किल तरीन मसला है हमारी फिका का, यानी इतनी इसमें मुख्तलिफ हदीसें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करने कि जब किसी आलिम के इश्तेहाद को चेक करना हो तो उसका उस्ताद उससे कहता है इस मसले पर रिसर्च करके आओ, इतनी हदीसें हैं तो कौन सी हदीस इसमें सही। अच्छा, सही भी हदीस होती है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता। इसके जरिए से किसी का इश्तेहाद चेक किया जाता है, जो आज पाकिस्तान में टीवी का हर एंकर और यूट्यूब चलाने वाला हर आदमी बैठ के भाषण झाड़ रहा है। बाकी बातें कहें तो कोई हमें उससे गरज नहीं है, अगरचे गरज है लेकिन इसके अंदर फिर हमारी फिक्र इन्वॉल्व नहीं। अब याद रखिएगा कि अहले हदीस का मतलब सऊदी स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं वली की इजाजत के बगैर निकाह गलत। बरादरान अहले सुन्नत की मेजोरिटी में फिक्र हनफी के यहां वली की कोई इजाजत नहीं, बल्कि उन्हीं का जुमला तो हमारे यहां मशहूर, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि हर एक को उलमा को, यानी गैर शिया उलमा, उन्हें भी अपनी बच्चियों की फिक्र हो गई थी, जो भाग भाग के या वो जो गेम खेलते हैं और पबजी और क्या गेम है उसके जरिए से उनको ट्रैप ना किया जाए कि फिक्र हनफी के उलमा भी या खामोश है, खामोश रहे या कहा हमारे यहां भी वली, उनके यहां वली नहीं। फिक्र जाफरी का क्या मसला, इस तरह से रिपीट हुआ टीवी पर और यूट्यूब में और फेसबुक पर और हर हता कोर्ट में, इस तरह से रिपीट हुआ कि फिक्र जाफरिया में वली की इजाजत के बगैर निकाह गलत। अच्छा, ये याद रखिएगा कि दुआ ज़हरा के केस में ये बात सही है दो वजूहात से। नंबर एक, लड़की का बालिग होना भी जरूरी है, लड़की का रशीद होना भी जरूरी है। रशीद माने समझदार, अकल उसकी मैच्योर हो गई, अगर बालिग है लेकिन वो अकल उसकी मैच्योर नहीं है, रशीद नहीं, तो यकीनन वली चाहिए। एक तो ये वजह। दूसरी वजह कि आज के मराज ये कहते हैं कि वली की इजाजत जरूरी, लेकिन फतवा कोई नहीं देता, सब कहते हैं एहतियात वाजिब, जिसके अंदर गुंजाइश है कि अगर कोई सातवें आठवें नवें बारहवें अठारहवें नंबर का मर्जे निकल आए तो उसकी जानिब रुजू हो सकता, लेकिन ये मसला उठाना मुनासिब नहीं था उस वक्त, क्योंकि कोर्ट भी बैकफुट पे चली गई थी कि हाँ शिया फिका में तो ये वली की इजाजत शर्त। चुनांचे अगर कहा जाए कि नहीं यहां भी कोई गुंजाइश है तो इस मसले में इसलिए गड़बड़ हो जाती कि यकीनन ये बच्ची रशीद तो नहीं है। असल बात मैं क्या कहने जा रहा था कि शिया फिका में इसके हवाले से आधे उलमा कहते हैं कि फिके हनफी का मसला है, यानी जरूरत नहीं है इजाजत की वली, और आधे कहते हैं कि जरूरत। यह बात हो रही है कुमारी लड़की जिसकी से पहले कोई शादी नहीं और वो समझदार। तब होगा क्या कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि जब ये मसला बार बार आया तो यूट्यूब के ऊपर जो प्रोग्राम थे या फेसबुक के, उसमें भी जो लोग कमेंट्स देते, कितने लड़कियों ने कहा कि अरे अगर ये मसला था तो हमारे उलमा ने आज तक क्यों नहीं बताया, मैं तो बगैर वली की इजाजत के शादी कर चुकी हूं। एक नहीं, इतने सारे का ये क्यों नहीं बताया मसला हमें आज तक, जो ये कह रही है कि मैं गलती कर चुकी हूं। इसका मतलब ये है कि वो जरा वो रिलीजियस है, वो बच्ची जो है वो फेमिनिज्म वाली या वीमेन लिबरेशन वाली या औरत मार्च वाली नहीं, लेकिन कह रही हमें मसला किसी ने बताया ही नहीं। अब मसला बताया वली की इजाजत जरूरी। हो सकता है कुछ अरसे बाद कोई ऐसा मर्जी आ जाए जिसके फतवे में ये हो कि वली की इजाजत नहीं, और हैं ऐसे बहुत से मर्जी। अब नतीजा क्या होगा जरा देखिए, मैं बहुत लंबी तफसील में चला गया उस मसले की जो मेरा मौजू नहीं है, अगर कि मुझे समझाना था कि वली अली वली वली कहते किसको इस्लाम, कितना इख्तियार वली का इस्लाम ने दिया है, लेकिन बात लंबी हो गई, मुख्तसर सुनिए। अब फर्ज कीजिए ऐसा मर्जी आ गया और लड़की ने बगैर वली की इजाजत के शादी कर दी कर ली, और जो मैंने कहा फर्ज कीजिए कि ऐसा मर्जी आ जाए, ये खाली सपोज नहीं है, हैं ऐसे मर्जी और फ्यूचर में भी तैयार है जिनका ये फतवा, तो उन्होंने कहा वली की इजाजत शर्त नहीं, लड़की ने शादी कर ली बगैर वली के, रिलीजियस लड़की है, घर वालों ने किसी ने उलमा ने किसी ने कहा तुम्हारी शादी गलत है बगैर वली की, गलत है अच्छा मैं अलग हो जाती हूँ शौहर से, और फिर उसने वली की इजाजत से दूसरी शादी की, जो उसने कितने रिलीजियस होगी जो अपने शौहर को छोड़ के इसलिए आ जाए कि मसला ये, उसकी दूसरी शादी हराम और गुनाह हो गई, क्योंकि अगर फतवा वो था कि बगैर वली के जायज है तो वो पहली शादी उसकी वैलिड थी, रिश्तेदारों ने घर वालों ने जो आजकल यूट्यूब से लोग मसले सीखते हैं उन्होंने कह दिया कि वो बगैर वली की शादी गलत है, अब दूसरी शादी उसने की अपने बाप की इजाजत से, वो पहले शौहर की बीवी है, ये दूसरी शादी उसकी गलत हो गई, हराम हो गई, कयामत तक के लिए हराम हो गई, गरचे इसको गुनाह शायद ना मिले, इसको वतिये बेशुबा कहे, लेकिन कह रहा नुकसान माल में जब इतनी एहतियात है तो इज्जत और नामूस में तो ज्यादा एहतियात। अब ये मसला इतना रिपीट हुआ इस वक्त यूट्यूब पर, अच्छा हुआ कि आज हिंदुस्तान के लोग नहीं है बना उनकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको ज्यादा सुनना, इंडिया में तो गैर मुस्लिमों से शादियां हो रही हैं, वली वली तो छोड़िए वहां तो अल्लाह रसूल भी नहीं है बीच में। खैर ये दूसरी बात, ये एक इशारा किया है, पूरा मसला नहीं है, इसके लिए तो अलग से सेशन चाहिए ना, तवज्जो दिलाना ताकि बाद में गुनाह कबीरा ना हो, ये गुनाहे कबीरा हो जाता है कि एक शौहरदार औरत को आप दूसरे के घर भेज दें पहले से सेपरेशन शरई सेपरेशन के बगैर। दूसरा मसला, ये मसला भी फिका का वो मसला है जो बहुत मुश्किल है और वो मेरे टॉपिक से इन मानों में रिलेटेड है कि विलायत माने इताअत, इताअत के माने हलालो हराम, हलालो हराम ना हो तो पेट में तुम्हारे हराम रिस्क जाएगा जो तुम्हें दुश्मन विलायत बना देगा। बस ये चंद जुमले, उसके बाद मुबाहले के हवाले से दो तीन बातें और आज की गुफ्तगु खत्म। दूसरा मुश्किल मसला जो है ना, पहला मसला तो है वली, वो बहुत मुश्किल होता समझाना अगर ये दुआ जहरा का केस ना होता। मैं इस केस पे कोई बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस मसले का इतलाक इस बच्ची पे नहीं है, वो बालिग अगर हो भी तब भी रशीद नहीं, रशीद ना हो तो सारे मरजे का इत्तेफाक है कि वली की इजाजत शर्त। लेकिन दूसरा मसला, इसका नाम है मुनज्जजात मरीज, सुना है कभी आपने, मसला है बहुत है मुनज्जजात मरीज। ये मसला ये है कि हर आदमी को अपने सारे माल और एसेट्स और जायदाद पे कंट्रोल होता है, इख्तियार होता है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे जहां चाहे खर्च करे, जिस तरह चाहे यूज करे। हाँ, अगर वो कह दे कि मेरे मरने के बाद ये करो तो फिर 1/3 तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत मशहूर जिंदगी में मर्जी। मगर एक मसला आता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हदीसें इतनी मुख्तलिफ है, मुनज्जजात है मरीज। ये क्या मसला? ये मसला है कि अगर कोई आदमी ऐसी बीमारी में, जिसके जिस बीमारी में वो आगे चल के मर गया, सेहत नहीं हो सकी उसे, चाहे वो बीमारी एक हफ्ते की थी, चाहे वो बीमारी 5 साल की, आगे चल के मर गया इसी बीमारी, जिसको फिका में कहते हैं मरज़े मौत, उसमें जो जितना भी अपने माल वगैरह को खर्च करेगा, वो उसका खर्च करना उसको इजाजत नहीं है। क्योंकि हमारे ज्यादातर आजकल के मराजे इस मसले को नहीं मानते, कहते जो आदमी सेहत में अपना माल खर्च कर सकता है वो बीमारी में भी। यही आगा खुई का फतवा था, यही इमाम खुमैनी का फतवा था, यही आगा खामेनाई का फतवा है, यही आगा फैयाज का फतवा है, यही आगा भाई देखो। लेकिन मसला आगा सिस्तानी का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फतवा, कहते मुनज्जजात मरीज साबित नहीं। मुनज्जजात के माने आप समझ लीजिए कि मरीज जो अपने माल को खर्च करता, अगर उसमें ये नहीं कि मेरे बाद तो वसीयत है, नहीं, अपनी जिंदगी में दे जाए, उसमें कहते हैं कि जो बिल्कुल सही किस्म के तसर्रुफात हैं। अभी मैं मिसाल दूंगा, बात खत्म करूंगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है बहुत लंबी बात हो गई है खुश्क मसले पे, लेकिन इंपॉर्टेंट। तो मसलन उसने अपना मकान बेचा, लेकिन मार्केट वैल्यू पे बेचा, ये ठीक, लेकिन कोई भी ऐसा तसर्रुफ जिसमें अदला बदला ना हो, लेन देन ना हो, वो गलत है। मसलन उसने किसी को गिफ्ट कर दिया जिंदगी में, लेकिन उस बीमारी में जिसमें आगे चल के मरेगा, कुछ गिफ्ट कर दिया, ये गिफ्ट उसका गलत है, गिफ्ट नहीं चलेगा, वापस करना। उसने कोई चीज राह खुदा में खर्च कर दी, राह खुदा में नहीं चलेगा ये खर्चा, वापस लाओ, मस्जिद को दी, इमामबाड़े को दी, किसी गरीब को दी। चुनाचे अगला तीसरा मसला आता है, सदका दिया आपने जिंदगी में, क्या हमारे यहां तो बीमार आदमी ही तो सदका देता है, सेहतमंद कहां सदका देता है। कहा जाता है ना, जब पहले जमाने में जब ये लोगों की माली हालत ठीक नहीं थी, और मुर्गी चिकन सबसे महंगा होता ना पाकिस्तान में, बहुत से लोगों को चिकन खाने का मौका दो ही मिलता था, या वो बीमार हो तो लोग चिकन बना के देते थे, या मुर्गी बीमार हो तब उसको दवा कर देते थे। तो खैर, ये बात हो रही है कि सदका तो बहुत से लोग बीमारी में देते, हाँ कोई और उनकी तरफ से दे रहा अलग, खुद दे रहा, गलत है ये सदका, जायज ही नहीं। बकरा लोग जमा करते, हम बीमार हैं भाई, एक बकरा हमारे नाम पे, हमारे पैसों से, बात अपने पैसों की, जायज ही नहीं है। अब मिसाल जो अगर सिसानी के जुमले पढ़ रहा हूं, अगर वो हिबा करे, यानी किसी को गिफ्ट दे, चाहे बड़ा गिफ्ट दे कि भाई मेरा मकान मेरी बेटी को मैं दे रहा हूं, मेरे बाद वो मेरी बेटी को, वो तो सारे मराजे के नजदीक गलत है, 1/3 में चलेगा, लेकिन जिंदगी में दे रहा, मेरा बिजनेस मैं अपने बेटे को दे रहा हूं। हाँ, सेहतमंदी के आलम में करे कोई बात नहीं, बीमारी में वो बीमारी जिसके बाद मर गया, तो हेबा नहीं चलेगा, वक्फ कोई चीज करके जाए नहीं चलेगी, सदका नहीं चलेगा। इबरा कहते हैं कि आपके पैसे किसी पे बाकी, आपने कहा अच्छा मैं बीमार हूं, मैं माफ करता हूं, माफी नहीं चलेगी। ये नहीं कि मेरे मरने के बाद माफ है, अभी माफ है, लेकिन माफी नहीं चलेगी, देना पड़ेगा उस आदमी को वापिस, और वो लेन देन भी नहीं चलेगा जो मार्केट वैल्यू से कम पर हुआ। वैसे आपका मकान है $1 मिलियन का है, आप उसको $500,000 में बेचे, आप उसको $1,00,000 में बेचे, लेकिन बीमारी में अगर $1 मिलियन का मकान आपने $8,00,000 का भी बेचा, तो ये डीलिंग गलत बातिल है, ये नहीं बेचा मकान और गाड़ी और हर चीज। ये मुनज्जजात के मरीज है, जो आदमी अपनी बीमारी में जिसमें मर गए, जो जो माली तसर्रुफात करता है जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो तो ठीक, जो मार्केट वैल्यू से कम हो वो गलत है। जो लेकर गया उस पर वाजिब है इसको लौटाना, और जिसके अंदर लेन देन ही नहीं है, खाली देना ही देना है, चाहे वो राहे खुदा में देना, उसको वो वापस लाओ। अच्छा, बाकी मराजे मैंने फिर दोहरा दूं और खत्म करूं बात। बाकी मराजे कहते हैं कि नहीं, मरीज को भी अगर उसकी अकल खत्म नहीं हुई है, तो इतना ही इख्तियार है जैसे सेहतमंद को, सिर्फ आगा सिस्तानी और उनकी तकलीफ की में इस वक्त अक्सरियत आ चुकी है। वो फरमाते हैं कि मरीज के ये सारे तसर्रुफात गलत है, बातिल है। जिसके पास गए उसके पास माले हराम पहुंचा, उसे वापस करना। जैसा मैंने कहा कि सदका तो आमतौर पर लोग देते ही बीमारी में। अच्छा, उस बीमारी में सदका दिया ठीक हो गया तो सदका भी ठीक, सदका दिया और मर गए, चाहे 5 साल बीमारी चली। कुछ कैंसर के पेशेंट है, कुछ एड्स के पेशेंट है, कुछ हेपेटाइटिस बीसी के पेशेंट है, दो दो साल, तीन तीन साल। सदका 3 साल पहले दिया है, वापस लो। तो ये जो माल हराम है जो हमारे यहां बहुत हो रहा, बकरे तो मैंने बहुत जबा होते देखे हैं मरस के अंदर, फिर अगर ठीक हो गया तो बकरा ठीक था, और अगर ये बाद में ये मर गए ऐसे तो अब बकरा तो वापस नहीं आएगा ना, लेकिन जो उसके पैसे। मामूली मसला नहीं। हाँ, सिर्फ एक तरीका है, वारिस। जब ये वापस आएगा, ये आदमी मर गए, वापिस आके किसको मिलेंगे, वारिसों को ना। हाँ, अगर वारिस कह दे कि हम राजी, और वो अपना कोटा पहले से खत्म ना कर चुके हो, 1/3 में वारिसों को इख्तियार होता है, अगर ऑलरेडी 1/3 वो मरने वाले के लिए खर्च कर चुके हैं तो अलग चीज। देखिए, मसले से मसला निकल। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि ये मसला हमारे यहां तो लोग जानते ही नहीं है, अमल तो दूर की बात है। मुनज्जजात मरीज नहीं चलेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में कानून है, और वो ये है कि अगर कोई आदमी सुसाइड करके मरता है और उसने कोई विल की है या वसीयत, तो वो बेकार, नेल एंड वॉइड। ये उससे मिलता जुलता मसाला। इसमें यही है कि मरीज इसी तरह खुदकुशी करने वाला, या इसी तरह ऐसे वक्त में अपने माल को खर्च करने वाला जब यकीनी मौत है, बीमारी नहीं है, यकीनी मौत। पानी के जहाज है, वो बीच में कहीं पैसिफिक या अटलांटिक ओशन में डूब रहा है, दूर दूर तक बचने का चांस नहीं है, डूब रहा है। उस वक्त वो कुछ चीजें अगर इस्तेमाल दे दे लोगों को, मोबाइल उठाएगा, मेरा मकान उसको दे दो, फुला दे दो, सब बेकार। मरज मौत, और ऐसा जहां मौत ना हो, ऐसा वाकया के मौत यकीनी नजर आ रही। ये आगे सिस्तानी का फतवा है, आज भी दूसरे महाराजे इसको नहीं मानते, और पहले वाले भी, अच्छा मानते मानने वाले भी बहुत है, लेकिन पिछले 50 साल में शायद बहुत कम। लेकिन बहरहाल आगे सिस्तानी की तकलीद, ये सब हराम। अब बताइए, ये जो हराम किसी के घर जा रहा है कि जानबूझ के हराम कर रहा, जिसने ऐसे मरीज से सदका लिया या तोहफा लिया या माफी मांग ली। माफी, माफी तो लोग मांग लेते हैं, भाई वो मैंने तुम्हारे इतने पैसे एक जमाने में खा लिए थे, मुझे माफ कर दो। वो माफ कर भी दे तो माफ करना बेकार, लेकिन इसमें कहीं जो माफी मांग रहा है तो इसके अंदर कहीं वो नहीं है कि जानबूझ के गुनाह कर रहा। फिर ये हराम क्यों आ रहा है इसके पेट में, ये हराम क्यों आ रहा है इसके बच्चों के खाने में, लाइल में। ये विलायत वाला है, विलायत के इताअत वाले को मानता है, लेकिन इताअत कर नहीं पा रहा है क्योंकि मसला नहीं जानता। इस बहुत अहम ये मौजू बनता है। और फिर अगर अहले बैत का मानने वाला इतना लाइल और जाहिल हो जाए, अहले बैत तो ऐसे हैं कि दुश्मन इस्लाम भी उनके चेहरे को देख के अपनी शिकस्त मान लेता, और जो वो कह रहे हैं उसे कबूल करने को तैयार हो जाता। बात वही है, विलायत ये है इताअत वाली। चुनाचे मशहूर वाकया कि जब पैगंबर ने मक्का फतह कर लिया, ये आखिरी चंद जुमले जरूरी थे, आज की असल मुनासिबत तो यही है ना। जब पैगंबर ने मक्का फतह कर लिया तो अब पैगंबर ने वो जिम्मेदारी अदा की जो हम में से हर एक पर भी है कि खुद दीन पे अमल न करो, दूसरों को भी प्रीच करो या इस्लाम का मैसेज कन्वे करो। पैगंबर के लेटर जाने लगे और हर लेटर का एक तरह से अलग जवाब आया। उसमें से एक लेटर नजरान गया। अब पहले लोग नजरान को नहीं जानते थे, अब ये जो हूसी और यमन का जिहाद है तो उससे नजरान का लफ्ज लोगों को पता चला। ये इस वक्त बॉर्डर है यमन और सऊदी अरब का, उस वक्त तो ये यमन का हिस्सा था, वहां क्रिश्चियंस थे, और ऐसे क्रिश्चियंस थे जो प्योर थे, अच्छे थे। डिस्कशन हुआ और कहा कि ये लेटर का स्टाइल वो है जो अंबिया के लेटर का स्टाइल होता है, हजरत ईसा भी इस तरह तबलीग करते थे। पिछली तकरीर में मैंने अर्ज किया था कि जनाबे सफिया के वालिद यहूदी पैगंबर को पहचान कर भी कहा कि मुखालिफत करेंगे, एक वो था और एक ये थे। क्या भी पैगंबर को नहीं पहचाना का लेटर का अंदाज वो है जो अंबिया का अंदाज होता। हम इसके ऊपर कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे। चुनाव के 60 आदमियों का एक डेलीगेशन तैयार कराया जिसे मदीने भिजवाया गया। कल रात को मैं एक जगह एक महफिल में था, वहां पे एक अरब आलिम, कई अरब आलिम थे, एक अरब आलिम मेरे साथ ही बैठे थे। बड़ा हॉट सा डिस्कशन शुरू हो गया। उनका यह कहना था कि यह वाकया मुबाहिले का 24th हिजरा को पेश आया। 10th हिजरा वो है जिसके 2 महीने के बाद पैगंबर की वफात हो गई। और गदीर का वाकया 18th जिलहिज को। मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से 9th जिलहिज को पेश आया। इस बहस में आपको अब डालने का क्या फायदा, पहले ही आपका दिमाग चकरा रहा होगा। मुनज्जात मरीज और दुआ जहरा और रशीदा और गैर रशीदा, तो बहुत ही मुख्तसर एक बात। मैंने कहा 18 जिलहिज को अगर पैगंबर ने गदीर का ऐलान किया तो 24 जिलहिज विद इन 6 डेज मदीने पहुंचकर ईसाइयों से सारी बात होके मुबाहला भी हो गया। कोई लमंगानी या फेररी में बैठ के नऊजुबिल्लाह, क्या यह काफिला मदीने आ रहा था? जबकि गदीर के हवाले से सभी मानते हैं कि पैगंबर 3 दिन वहां स्टे करते हैं, 20 जिलहिज तक। 21 को वहां से चले, 24 तक मदीने भी पहुंचे, ईसाई डेलीगेशन भी आ गया, उनसे बातें भी हो गई। उन्होंने कहा सिर्फ 1 दिन की बात हुई, चले 1 दिन सही। आज से 60 साल पहले भी गदीर के मैदान से मदीने जाने में 6 दिन लगते थे, सिर्फ 60 साल पहले। पढ़ लीजिए लोगों के सफरनामे, 1400 साल पहले। वो बहस कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये बस यही है, मैंने बड़ी रिसर्च की है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज़ औकात हमारे यहाँ के लोग इंडियन और पाकिस्तानी उलमा और उनकी रिसर्च को बहुत ही डिग्रेड करते हैं। खास ही बहस में वो नहीं माने, लेकिन खैर आपके लिए बता रहा हूं, 24th of ज़िलहिज 9th हिजरा। 9th हिजरा कौन सा साल है? जिस साल पैगंबर ने हज नहीं किया, मौला को भेजा के जाके मुशरिकीन के ऊपर पाबंदी लगाओ, मक्के में एंटर नहीं हो सकते। 1-2 दिन पहले को दाखिल हो गया था ना मक्के में, बीबीसी रिपोर्ट दे रहा है। 9th जिलहिज सब तरफ गए, नजरान के ईसाई भी आए। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम चेक करेंगे। ये होता है सही तरीका, दीन को हक को पहचानने का। दीन है हक और बातिल, पहले चेक करें। व्हाट्सएप के ऊपर भरोसा ना करें, यूट्यूब पे भरोसा ना करें, फेसबुक पे भरोसा ना करें, इंस्टाग्राम पे भरोसा ना करें। उसी चीज पे भरोसा करें जहां बुजुर्ग की तरह कह सके कि अगर मैं गलत देख रहा हूं तो मेरी आंखें अंधी हो जाए, मेरे कान बहरे हो जाए। तो उन्होंने कहा चेक करें। आए वो लोग, जिस वक्त आए तो जोहर की नमाज का वक्त था, पैगंबर जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। आज की तकरीर का पहला हिस्सा था कि जब मौला ने साहिल को अंगूठी दी, वो जोहर की नमाज के बाद। ये जोहर की नमाज, पैगंबर की नमाज खत्म हुई, ये मस्जिद में एंटर हो गए। उस वक्त तक मस्जिदों में नॉन मुस्लिम की एंट्री हराम नहीं थी। पैगंबर नमाज खत्म की, अब इन्होंने अपनी इबादत शुरू की। और ईस्ट के डायरेक्शन में जो ईसाइयों के वो घंटी वंटी बजती है इबादत के लिए, वो इन्होंने किया क्योंकि यमन ईस्ट में था, जहां पे इनका सबसे बड़ा उस जमाने का चर्च था। यमन एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, लेकिन टाइम नहीं। खुलासा यह है कि मुसलमान जोश में आ गए, मारने दौड़े कि मस्जिदों नबवी के अंदर गैर मुस्लिम आकर अपने तरीके से इबादत कर रहा। पैगंबर ने कहा रुक जाओ, ये मेहमान है, जो इनका दिल चाहे उस तरीके से इबादत करे। हमारे यहां शीयत के दरमियान आपस के अंदर सर फुटबल होता है, ये इस तरह क्यों नमाज पढ़ता है, तो वो उस तरह क्यों अजादारी करता है, तो वो उस तरह क्यों तरीका इख्तियार करता है। पैगंबर ने कहा मेहमान। और फिर जो रिवायत है, पैगंबर ने उनको मस्जिद के सहन में खेमा लगाने की परमिशन दी। और वो पैगंबर से खाली 1 दिन नहीं, जैसे वो कल एक अरब आलिम बहस कर रहे थे, कई दिन पैगंबर का और उनके दरमियान मुनाजरा चलता रहा। पैगंबर ने कहा कि इस्लाम कबूल करो, उन्होंने कहा तो हम तो आपसे पुराने मुसलमान हैं, हमारे पास ऑलरेडी इस्लाम है, ईसा अल्लाह के सच्चे नबी थे, हम तो आपसे पहले से उनको मानते आए, आप ये नए मुसलमान कहां से आ गए। बड़ा इंटरेस्टिंग मुनाजरा था, दिल चाह रहा था कि पढ़ू, लेकिन आज टाइम भी नहीं है और शायद उलमा ज़ाकरीन इसको पढ़ते भी होंगे। किसी तरह से वो लोग नहीं माने तो आखिर ये तय हुआ, फकुल तआल और नदु अबना अना व अबना को। अब दलीलों से बात नहीं चल रही, कुरान की आयतें भी आ गई। पैगंबर ने कहा तुम ईसा को खुदा का बेटा क्यों मानते हो? कहा इसलिए कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। फौरन कुरान आया, पैगंबर नहीं, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम, ईसा की मिसाल तो आदम जैसी। ईसा अगर बगैर बाप के पैदा हुए तो खुदा के बेटे बन गए, तो आदम तो बगैर बाप और बगैर माँ दोनों के बगैर पैदा हुए। अब कुरान तो नहीं कह रहा, लेकिन मेरा जुमला तो उनको तो डबल खुदा होना चाहिए, लेकिन नहीं मानना। मैं ना मानू वाला मसला था। फकुल तआलौ नदु अबना अना वा अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, सुम्मा नफ्तहिल फिर हम मुबाहिला करें। मुबाहिला माने आमने सामने खड़े हो जाए और फनजल लानत अल्लाह अल काज़िबीन, हाथ उठा के कहे खुदा बंदा जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत। ये इसका, इस दुआ मांगने का नाम है मुबाहिला। अबनाना निसाना अनफुसना, और ये आयत इतनी स्ट्रांग आयत कि मर्दूद मलऊन उमर साद का बाप साद इब्ने अबी वक्कास मुआविया का खास आदमी था, लेकिन एक दिन मुआविया ने उसको पकड़ के बुलाया और कहा कि मैंने ये ऐलान किया है कि सारे मुसलमान अली पे लानत करें, तुम क्यों नहीं करते लानत? काली की एक ऐसी खसूसियत मेरे इल्म में है कि अगर कोई मुझे 100 ऊंट मुझसे मांगे और ये खसूसियत मुझे दे दे तो मैं तैयार। और वह खसूसियत यह है कि आया मुबाहिला में वो नफ्से रसूल बन के गए थे, मैं उन पर कैसे लानत करूं जो नफ्से रसूल है उस पर लानत, तो रसूल पे लानत हो गई। ये उमर साद जैसे मलून का वैसा ही मलून बाप वो ये कह रहा। और फिर आपको सातवें इमाम का वाकया मिलेगा, हारून ने कहा अली के खिलाफत की दलील, सातवें इमाम ने यही आए मुबाहिला पेश की, रसूल है रसूल ना है तो नफ्से रसूल उनकी जगह आएगा। मामून ने आठवें इमाम से पूछा अली के खिलाफत की दलील, यही आयत पेश की। तो ये आयत मुबाहिले की आयत मासूमीन ने कई जगह पर अपने जद अली इब्ने अबी तालिब की इमामत के लिए पेश किया, वहां नफ्से रसूल बन के गए। लेकिन आगाज है अब ना आना, बकौल अजहर हसन जैदी साहब के कुरान ने कहा अब ना आना, बाकी सब पे पाबंदी लगा दी, बस ये जा सकते हैं तुम लोग, अब ना आना, पता ना कभी ना आना। निशाना औरतों को लाओ। अच्छा, औरत के तीन रूप इस्लाम के अंदर माने गए, मां बेटी और बीवी। आप कहेंगे बहन भी तो होती, नहीं असल ये तीन, चुनाचे अगर कोई आदमी मरता है तो उसकी बहन को उसकी विरासत में मिलती, उसकी मां को, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को मिलती। ये तीनों ना रहे तब जाके कोई भाई बहन की बात, ये तीनों असल। निशा अना औरतों को लाओ, पैगंबर ऐसी औरत को लेके चले जो इसी मैदान मुबाहिला में किसी की मां थी, किसी की बेटी थी, किसी की बीवी थी। यानी हदीस किसा का जुमला, हम फातिमतो व अबूहा, बाबा भी हैं व बालुहा, शोहर भी हैं व बनुहा, बेटे भी हैं। जो हदीस किसा में खुदा का लफ्ज था मैदान मुबाहिला में, वो अहले बैत का एक्शन था। और फिर यहां पे आयत में भी आप देखें और फैक्ट हिस्ट्री का वो भी आप देखें, ये इस तरह से चले। आयत ने किस क्या कहा, बेटे शुरू में, नफ्स आखिर में, बीच में आया औरत, यानी फातिमा दरमियान में लाई गई। ये एक तरह से हिजाब फातिमा की तैयारी हो रही है, दोनों तरफ से पहरा बिठा दिया गया, इधर भी महरम है उधर भी महरम है, बीच के अंदर फातिमा है। ये लफ्ज की हद तक फातिमा का हिजाब है, वो अमल की हद तक। मरहूम कब्बन साहब क़िबला अक्सर जुमला कहते थे और मैं भी उसको रिपीट करता हूं, वो ये कि अब जो मैदान मुबाहिला में चले तो आगे रसूल खुदा, गोद में हुसैन है, हसन ने नाना की उंगली थामी है, पीछे फातिमा है, उनके पीछे अली। यानी इस तरह से हिजाब फातिमा को मेंटेन करते हुए फातिमा से दीन की खिदमत ली जा रही है कि फातिमा का पूरा हिजाब बाकी है। इस तरह से बाकी है कि जमीन पर पहले पैगंबर के पैर का निशान बनता है, फुटप्रिंट, उस पर फातिमा का पैर आता है, उस पर अली का पैर आता है। यानी फातिमा तो फातिमा, फातिमा के पैर का निशान भी आसमान की मखलूकात से छुपाया जाता है, अली के पैर के जरिए से तहतु सरा जमीन की मखलूकात से छुपाया जाता है रसूल के पैर के जरिए। और फातिमा की बेटियां कम अज कम जो सैदानियां हैं उनकी क्या कैफियत है, जश्न के मौके पे ज्यादा कहना अच्छा नहीं। लेकिन एक आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, ये आखिरी मेरे जुमले, वो ये कि यहां पे वो तो आपको मालूम है बहुत मशहूर हदीस है, किसा पैगंबर ने अहले बैत को एक चादर के नीचे जमा करके एक नूरानी मीटिंग की, वैसती व जलाली निमा खलक समा अम अपनिया वला अर्जम मधिया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुजिया वला फलक। ये तो नूरानी मीटिंग हो रही, और एक मीटिंग ईसाइयों में थी। वो मशहूर जुमला है, बहुत मुख्तसर, जो उनके सबसे बड़े मुकद्दस तरीन राहिब थे उनका एक जुमला था। कि कल अगर पैगंबर असाब को लेके आए तो तुम भी निकल के मुबाहिला करना, और अगर अपने जिगर के टुकड़ों को लेके आए तो कतान मुबाहिला न करना। जिसे अपनी सच्चाई पे शक होता है वो साथियों को खतरे में डाल देता, लेकिन कभी अपने जिगर के टुकड़ों को खतरे में नहीं डालता। ये इधर की मीटिंग थी, और एक जुमले की मीटिंग नहीं थी, पूरी रात की मीटिंग थी। अगली सुबह को वो लोग पहाड़ के पीछे से देख रहे हैं कि ये मदीने से ये लोग किस तरह आते हैं। आज भी मदीने में वो मस्जिद मौजूद है जहां पे मुबाहिला हुआ था। पहले उसके बिल्कुल सामने रमादा होटल था, फिर उसका नाम चेंज हो गया। खैर, तो खुलासा ये, जैसे ही ये देखा कि जिगर के टुकड़े ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक जुमले उनकी जबान पे आए ना कि इतने सच्चे चेहरे नजर आ रहे हैं कि अगर ये पहाड़ के टलने की दुआ करें तो पहाड़ भी टल गया। उन्होंने शिकस्त मान ली, और जो पैगंबर का इस्लाम कबूल करो का इस्लाम तो हम कबूल नहीं करेंगे, तो फिर जो जिजिया है वो दे, फिर हमारे साथ मिलके दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करना जब हम पे अटैक हो। कहा कि नहीं, ईसा ने हमें तलवार उठाने से मना किया है, हम बहुत ही सुलो आश्ती वाले लोग, तो बहुत ज्यादा ईसाइयत कहती है ना कि हम तो बस वी आर लव, लव जीसस क्राइस्ट इज द लव। उनके मजालिम पढ़िए तारीख में, लेकिन उस वक्त तक यही था। कहा कि हम तलवार नहीं उठा सकते, हमारे नबी ने मना किया है कि हर एक से मोहब्बत से बात करो, यानी औरतों से भी मर्दों से भी। तो कहा अच्छा, तो फिर इस्लामी दुनिया तुम्हें प्रोटेक्शन देगी तो उसके लिए जो आज टैक्स लगाए जाते हैं तुम जिजिया दो। कहा ये हमें कबूल मान लिया उन्होंने। क्रिश्चियन ओरिएंटलिस्ट, बाद में क्रिश्चियनिटी ने रुख चेंज किया सेंट पॉल के आने के बाद। याद रखिए, बहुत ही खतरनाक आदमी है, पूरी क्रिश्चियनिटी चेंज कर दी। अब उसमें तलवार भी आ गई, अब उसमें और बहुत खराबियां आ गई, लेकिन फिर वो इस्लाम पे एतराजात में कहते हैं इस्लाम तो तलवार से फैला, तुम ये कह रहे हो। अरे तुम्हारा अपना वाकया गवाही दे रहा है कि जब तुम मैदान पैगंबर के पास आए तुम्हारे खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाई। उस वक्त तक तो पैगंबर पूरा अरब फतह कर चुके, ये खुद दलील इस बात की है। जो पैगंबर पे तलवार से हमला कर रहे थे उनका इस्लाम का डिफेंस करने के लिए तलवार उठाई गई, डिफेंसिव तलवार नहीं उठाई गई, वरना पहले तो तुम ही थे। तुम तो तलवार उठाने वाले ही नहीं हो, तुम पे अगर अटैक होता कि एक दिन में खात्मा हो जाता यमन के सारे ईसाइयों। जो मोहब्बत के साथ आया उसको मोहब्बत का जवाब दिया गया, और जो तलवार उठा के आया तो फिर तलवार से अपना दिफा किया गया। खुद ये वाकयात गवाही दे रहा है इस बात की। अलबत्ता इसके अंदर ये आखिरी बात जो कह रहा हूं, दो छोटे से जुमले अर्ज करके खत्म करो। मेरी कुछ तकारीर के बाद मेलबर्न में मेरे खिलाफ जो एक एटमोसफियर बना, और तो कुछ उनकी समझ में नहीं आया क्या कहें। बहुत आसान होता है इल्जाम लगा देना कि फुला खुम्स खा जाता। मैंने आज तक किसी मर्जे से विकारत नहीं कि मैं चक्कर में पड़ता ही नहीं, और भी कई तो कहा कि भाई बद अखलाक है। अच्छा, एक अखलाक की दो किस्म, एक होता है आपस की डीलिंग और एक होता है दीन के मसले में। दाढ़ी मुंडवाते तो बड़ी सख्ती से बात करते हैं, कोई बेहिजाब औरत नजर आए तो बड़ी सख्ती से बात करते हैं, और अगर कहीं मिस गैदरिंग हो तो उठ के चले जाते हैं, इस किस्म की बात है। अब नजरान के वाकये में आखिरी बच्चे भी केक का इंतजार कर रहे होंगे, वो खुशी तो इनको मनाना। तो जब ये लोग आए थे ना पहले दिन 60 आदमी, तो इनको ये शो करना था मुसलमानों पर कि हम भी कुछ हैं, वी आर समथिंग, हमें बहुत कमजोर ना समझो। तो अब हैं का क्या मतलब है, ये तो देख चुके थे तलवार लाना बेकार, खैबर तो इतना ताकतवर किला था वो खत्म हो गया, मक्के वाले इतने ताकतवर खत्म हो, ये अपनी दौलत का मुजाहिरा किया। हम जैसे लोगों को, गरीब मिस्किन लोगों को ऐसे बहुत पैसे वाले मिलते हैं। चुनाचे पैगंबर के पास आए तो रेशमी कपड़े पहन के आए, खास जो उनके आगे आगे लीडर थे, और सोने की अंगूठियां। तारीख का वाकया है कि नहीं, 9 हिजरी का मुबाहिले का, मदीने की मस्जिद में आके पैगंबर से ने कहा कि इबादत करने दो, खेमे लगा दो इनके लिए, कहां स्टे करेंगे, होटल तो थे नहीं। इसके बाद ये पैगंबर की खिदमत में आए, पैगंबर ने इनको देखकर बड़ी कराहियत के साथ मुंह फेर लिया। मेहमान आए, डेलीगेशन आए, और ये आज भी एक मसला है कि पैगंबर जैसा साहिब खुलूक अजीम, हमारे अखलाक का मतलब यह है कि कोई गुनाह करे, गुनाह कबीरा करे, शराब पिए, जिना करे, जुआ खेले, मौलाना को अपने घर में मेहमान बुला ले तो मौलाना का इससे ज्यादा नेक आदमी कौन होगा, देखो कितनी इज्जत करता है हमारी। और हम जैसे लोग के बद अखलाक आम आदमी नहीं, मेंबरों से कहा जाएगा। लेकिन बात यह पैगंबर ने मुंह फेर लिया, वो इधर लेफ्ट साइड पर आया, पैगंबर ने मुंह फेर लिया, राइट लेफ्ट सामने, परेशान होकर वो बाहर निकले मस्जिद से, ये क्या हो रहा। मौला सामने से, मैं वाकया बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूं, कहा तो जिस लिबास में तुम जा रहे हो इसमें कभी पैगंबर ना तुम्हें देख सकते ना तुम्हारे सलाम का जवाब दे सकते। हमारी हदीस की किताबों में एक हेडिंग, अगर कोई आदमी गुनाह कर रहा हो तो उसको सलाम मत करो, हाँ जवाब देना तो अब वाजिब हो गया बाद में। सलाम का मतलब है तुम पे सलामती। वो शराब पी रहा, हमने कहा सलाम वालेकुम, तुम पे सलामती। शराब पी रहा और आप कह रहे तुम पे सलामती। कोई आदमी जुआ खेल रहा है, आप कहें तुम पे सलामती। कोई आदमी डिस्को डांस क्लब में बैठा, आप कहें तुम पे सलामती। आपकी नीयत नहीं, लेकिन अमल ऐसा है जिससे एक फॉल्स इंप्रेशन देखने वालों को भी जा सकता है और उसको भी जा सकता है। चुनाच मौला ने कहा इस लिबास में तो पैगंबर कभी तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देंगे। कहा फिर क्या करेगा, रेशमी लिबास उतारो, सोने के जेवरात उतारो, जिस तरह बाकी लोग आते उस तरह। अब वो अपने आप को चेंज करके आए तो पैगंबर ने इतने अखलाक से मुस्कुरा के बात की कि उनको यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे अपने पेशवा से इस तरह बात नहीं करते। पैगंबर ने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि जाति मामलात में अखलाक अलग है, अल्लाह के दीन के बारे में अखलाक अलग चीज। पैगंबर जैसा रहमतुल्लिल आलमीन खुलक़े अजीम और आने वाले मेहमान, और इस तरह से मुंह फेर रहा है तमाम तारीख मुत्तफ़क, खास तौर पर जो उनके आगे लीडर थे कि तुम कहते हो ईसा ईसा, तलवार नहीं उठाएंगे, ईसा ने मना किया, हर एक से मोहब्बत करेंगे, ईसा ने कहा। अरे तो ईसा की जिंदगी कितनी सादा थी, यहां तो ईसा याद आ रहे, वहां ईसा याद नहीं आ रहे कि रेशमी लिबास मत पहनो, सोने की नुमाइश मत करो, जो शो ऑफ का है। हमारे यहां भी लोग दीन का वो हिस्सा ले लेते हैं जो अपने आप को सूट करता है, जो अपने खिलाफ जा रहे हैं वह भूल जाते हैं। आधी चीजों में ईसा याद आ रहे, आधी चीजों में अपनी मर्जी चल रही। एक तो ये पैगाम था कि अखलाक का मतलब पता न लीजिए, वो आपको गुमराह कर रहा, जो कहता है कि मिक्स गैदरिंग है तो बड़ी खुश अखलाकी के साथ बात करो। क्या अगर सिसानी की किताब में नहीं लिखा कि वाजिब है वहां से बायकॉट करना, इल्ला ये कि कोई इतना ढीठ हो बेगैरत हो कि उस पर असर ना हो, फिर बैठ तो सकते हो लेकिन कराहियत के साथ। खैर एक बात, दूसरी और आखिरी बात, ये नजरान के ईसाइयों ने देखा और शिकस्त मान ली, कोई चीज मानने को तैयार नहीं थे, ना अकली आर्गुमेंट, ना पैगंबर की बातें, ना कुरान की आयतें, और अभी मान ली। हाँ आपने कहा माना इसलिए पंजतन गए, लेकिन ये मुबाहिला पंजतन की अजमत बता रहा या फकत अजमत फातिमा बता रहा, भाई ये चेहरे देख के मान लिया तो इनमें से कौन सा चेहरा उनके लिए नया, क्या रसूलुल्लाह को अब तक नहीं देखा, पहली बार नजरान के ईसाई देख रहे, मस्जिद में पैगंबर से बात करके आए इतनी देर, क्या अली को नहीं देखा पैगंबर अली, बल्कि अली ने ही तो इनको बताया कि जाओ जाके रेशमी कपड़े बदलो और सोने के जेवरात उतारो। हमारे तो कितने नौजवान ऐसे सोने की चेन पहन के घूमते हैं ना, तो पैगंबर के पास, अली ने कहा, अली को नहीं देखा, अली को तो अच्छी तरह याद कर लिया कि इसने वो तरीका बताया जिसके बाद पैगंबर का अखलाक हमें मिला। क्या हसन हुसैन को नहीं देखा, पैगंबर मिंबर तक पे बैठते हैं तो गोद में एक तरफ हसन को लेके बैठते हैं, एक तरफ हुसैन को। चारों पर्सनैलिटीज नजरान के ईसाइयों के लिए नई भी नहीं थी और अलग अलग भी नहीं थी, चारों एक साथ मस्जिद में देखा, सिर्फ वजूद फातिमा, फातिमा का चेहरा नहीं देखा, मैंने तो कहा वहां पैर भी छुपाया जा रहा, खाली वजूद फातिमा, खाली फिजिकल प्रेजेंस फातिमा का, फिजिकल भी निकाल दीजिए, खाली फातिमा का प्रेजेंस। आज अगर हमारी इस मजलिस में भी शहजादी कौन है नाती है, अल्लाह करे कि हमारी मेरा बयान ऐसा हो कि वो भी तशरीफ लाए, तो खाली प्रेजेंस वो बाकी अहले बैत की अजमत को इतना बढ़ा देता है। खाली प्रेजेंस, खाली वजूद है सैयदा जो सर से पैर तक इतना छुपा हुआ है कि पैर का निशान भी कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन खाली वजूद है फातिमा इतनी बरकतें लेके आता है कि रसूल अली और हसन हुसैन की अजमत है फातिमा की वजह से बढ़ जाती। इसीलिए हदीस किसा में मरकज फातिमा को बनाया। तो मुबाहिला गदीर का लफ्ज अच्छा नहीं है, गदीर के दूल्हा अली है, मुबाहिला की दुल्हन फातिमा है, गदीर अली की हुकूमत का ऐलान है और मुबाहिला फातिमा की उस इस्मत और विलायत का ऐलान है जो रिसालत और इमामत की सबसे बड़ी मददगार बनती। और इस मौके को हम कैसे जाय होने दें, खुदा बंदा तुझे वास्ता فاطمہ زہرا کی نظمتوں کا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا عدد ما احاط به علمک وآص به کتابک. جتنے صاحبان ایمان مرد اور عورتیں آج کی اس نورانی محفل میں جمع, جس میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار اتنی بڑی عیدیں جمع ہو گئی, انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما بحق فاطمہ, ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کی حاجتوں کو پورا فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. کووڈ ایک مرتبہ پھر پھیلتا جا رہا ہے, خدا بندہ اس مضی مرض سے دنیا بھر کے انسانوں کو محفوظ فرما. خدا بندہ وہ فاطمہ جو سورہ دہر سے پہلے تین دن روزہ رکھ کے فاقہ کر کے خوشنودی پروردگار حاصل کر رہی ہیں, ان کے اس عمل کا واسطہ صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو ہر ظالم کے شر سے محفوظ فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما, اور ہمارے تمام علماء اور مرجع کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما, اور وہ جو حکم امام کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور خدا بندہ ہماری تمام پریشانیوں کے ہمیشہ ہمیشہ خاتمے کے لیے, مباہلہ میں فاطمہ نے جو اسلام کو کامیابی دلائی, یہ کامیابی ساری دنیا کے لیے فاطمہ کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج پھر میرا ارادہ ٹوٹا, ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہو گئی, لیکن اب بہت عرصے تک آپ میری اس آواز کو نہیں سنیں گے, تو شاید میری یہ معذرت قبول کر لیں. ایک مرتبہ اس مناسبت سے ایک غدیری صلوات بھیجے محمد و آل محمد.